Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज पांचवा दिन भागवत सत्संग का धारवाड़ में। आपके नगरवासियों ने भगवान की कथा और कीर्तन का आयोजन किया है सबके सुख शांति के लिए, और भगवान के चरणों में प्रीति हो, कृष्ण भक्ति हो, हमारा मानव जन्म सफल हो इसके लिए। कल हम नवम स्कंद श्रीमद् भागवतम ईशानु कथा, ईश भगवान को कहते हैं, अनु मतलब उनके अनुयायी जो उनके पीछे चलते हैं, मतलब भगवान के भक्त, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा की चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत कल सूर्य वंश, दो क्षत्रियों के वंश चले हैं, अभी तक चल रहे हैं, कलयुग में लुप्त हो जाते हैं। एक सूर्य वंश है जो विवस्वान, जिसका नाम है सूर्य देव, उससे शुरू हुआ, और दूसरा चंद्र वंश, वो चंद्रमा से शुरू हुआ। तो कल सूर्य वंश में विवस्वान के पुत्र वेवस्वत मनु, जिसका नाम शरदवान है, उसकी पत्नी शरदा, उसके 10 पुत्र, विशेष उनका वंश इक्ष्वाकु, सूर्य वंश में मुख्य राजा इक्ष्वाकु हुए हैं। इक्ष्वाकु वंश में आगे चलकर अज और दशरथ महाराज, और दशरथ के घर में भगवान रामचंद्र का प्रकट्य हुआ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ। तो ये कथा हमने सिर्फ श्री रामचंद्र जी की कथा को नहीं बोला था, चार पांच अध्यायों में भागवत में संक्षेप में ये कथा है, और फिर निमि महाराज की कथा कल हमने कही थी। भगवान रामचंद्र की कथा में दशरथ महाराज की 3 रानियां हैं, पुत्र नहीं है। एक पुत्री थी दशरथ महाराज की, उसका नाम था शांता। वो पुत्री उन्होंने गोद में दे दी थी अंग देश के महाराज रोमपाद को। रोम कहते हैं बालों को, पाद कहते हैं पांव को, जिनके पांव के तलुए में बाल थे, तो इसलिए उनको रोमपाद कहते थे, महाराज रोमपाद। महाराज दशरथ को राज में तो सब सुख सुविधा थी, संतान नहीं थी, तो एक दिन वशिष्ठ जी से कहने लगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे को कोई यज्ञ कराइए। उस वक्त उनके जो मंत्री थे सुमंत, उन्होंने कहा महाराज मैंने कुमारों से ये बात सुनी थी, पहले आपके महाराज पिताजी के यहाँ आए थे, कह रहे थे कि एक दिन दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा होगी, इच्छा होगी, तब वो जाएंगे ऋषि श्रृंग से यज्ञ कराएंगे, तब पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन वो ऋषि श्रृंग कौन है, कैसे मिलेगा, जब ये पूछा महाराज दशरथ ने, और वशिष्ठ जी ने भी कहा कि ऋषि श्रृंग ही आपके लिए पुत्र कामना की प्राप्ति का यज्ञ करा सकता है, तो पता लगाने लगे कि ऋषि श्रृंग है कौन। तब सुमंत्र ने कथा बताते हुए कहा कि महाराज आपकी बेटी शांता उसी ऋषि श्रृंग से विवाही है रोमपाद महाराज ने, वो आपका ही अपना जामाता है, आप जाएंगे तो आएगा। तो उसकी जीवन की कथा बताते हुए कहते हैं विभांडक ऋषि एक था। विभांडक का मतलब अपने घर में कोई बर्तन नहीं रखता था, जंगल में रहता था, कंदमूल खाता था। उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा भेजी थी इंद्र ने, वो भी ब्रह्मलोक से लाकर। उस अप्सरा को देखकर विभांडक ऋषि ने अप्सरा को देखा, कहा कि आप हमारे चित्त को विचलित नहीं कर सकती हैं, फिर भी आपको अगर भेजा है देवताओं के तो उनका मनोरथ पूरा होना चाहिए। तो ऋषि विभांडक ने का शक्ति का हास हुआ और वो एक हिरण ने स्वीकार कर लिया, और उस हिरण को जो बेटा हुआ, वैसे ऋषि का वीर्य था जिसमें से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो बहुत सुंदर था, लेकिन उसको ऋषि श्रृंग कहते हैं कि छोटे से सिंह हो ऐसे उसको दिखते थे। अब ऋषि विभांडक ने ये न कहा कि स्त्री को देखने से पतन हो जाता है, उतना इंद्र ने मेरा जो है योग तपस्या को पतन कर दिया, इसलिए उस बच्चे को कभी स्त्री का दर्शन ही नहीं कराया, जंगल में रख दिया, कहा कि जंगल के अंदर स्त्री को देखेगा नहीं तो कभी इसका ध्यान भी नहीं जाएगा। महाराज रोमपाद के देश के अंदर एक बार उसने ब्राह्मणों को दान देते हुए एक छोटा सा बहुत बड़ी बहुमूल्य हीरा देते हुए देखा कि ब्राह्मण इस हीरे को क्या करेंगे। छोटे हीरे को निकाल के बहुत बड़ा मोटा हीरा दे दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे को दान देते हुए महाराज ने इसके अंदर पक्षपात किया है, बेईमानी की है, इसलिए हम इसका यज्ञ कराएंगे नहीं। महाराज रोमपाद के देश में अकाल हो गया, अब तो कहीं से बरसात नहीं हो रही है, दुखी हो गया, कोई ब्राह्मण उसकी पूजा नहीं करा रहा है। तब मंत्रियों ने कहा कि महाराज इस वक्त अगर ऋषि श्रृंग आपके देश में चरण रखेंगे तो आपके देश में वर्षा होगी। तो ऋषि श्रृंग को लाया कैसे जाए? महाराज हम नहीं जा सकते, वे भांडक के शराब से डरते हैं, उधर तो कोई उनको लेने नहीं जा सकता, वो नगर में आते नहीं है, स्त्री का कभी मुंह भी नहीं देखा है। तब कुछ वैश्याओं को विशेष रूप से तैयार करके ऋषि के वस्त्र पहनाकर ऊपर जूड़े बांध के और गेरू कपड़े पहना के नाव में भेज दिए। उन्होंने जाके वहाँ उस स्थान के ऊपर देखा कि विभांडिक किस वक्त बाहर जाता है, कब घर पे नहीं है। जिस वक्त विभांडिक घर में नहीं था विभांडिक ऋषि, उस वक्त वो स्त्रियां ऋषि के वेश में श्रृंग ऋषि से मिलने गई। उनको पुरुष समझ के कहा आइए महाराज बैठिए जलपान कीजिए, तो उनको कंदमूल और पानी खिलाया। इन्होंने बोला नहीं हम ऐसा नहीं जलपान करते, हमारे पास रसगुल्ला गुलाब जामुन और ये जलेबी हम लाई है, ये खाइए। विभांडक ने कभी ऐसा तो फल खाया नहीं था, उसको आश्चर्य हुआ कि ये तो कहां से आप लाए। बोला हम तो ऐसा ही खाते। अब तो ये श्रृंगी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। दो दिन ऐसे आते रहे, तीसरे दिन आप तो हम अपने आश्रम में जाएंगे। अब जो उन लड़कियां थी तो वो लड़कियां अब लड़के के रूप में आई थी। विभांडक का बेटा ये श्रृंगी उनकी तरफ बहुत आकर्षित हो गया। जाते समय एक दूसरे से गले मिलकर विदा हो रहे, बोला अब मैं तो आपके साथ जाऊंगा, यहां रहूंगा नहीं। वो ऋषि श्रृंग उनके साथ नाव में चले गए और जैसे ही उनका पांव चरण पड़ा रोमपाद के राज में ऊपर से वर्षा होने लगी। अब तो रोमपाद महाराज ने कहा विभांडक मेरे को शाप दे देगा, इसलिए ऋषि श्रृंग का विवाह कर दिया शांता से, जो दशरथ महाराज की और बेटी थी। अब विभांडक पीछे क्रोध में आ रहा है तो महाराज ने क्या किया, रोमपाद ने जगह जगह पे लिखा है ये ऋषि श्रृंग का नगर है, ये ऋषि श्रृंग मार्ग है। अब तो अपने बेटे का नाम सब जगह देखते हुए वहां पहुंचे तो विभांडक का भी क्रोध शांत हो गया। और अब महाराज दशरथ रोमपाद के पास आए, मित्र थे दोनों, कहा कि ऋषि श्रृंग को दीजिए, मैं इससे यज्ञ कराऊंगा। ऋषि श्रृंग आए हैं अयोध्या में, यज्ञ किया है, यज्ञ के कुंड के अंदर से देवता कलश लेके निकला है पायसम का, और उस कलश को जब दिया महाराज दशरथ को पुरोहित के माध्यम से, तो उन्होंने कौशल्या को एक भाग दे दिया, फिर उसके दो भाग करके सुमित्रा और केकई को दिया। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य हुआ और साथ में भरत जी, केकई को और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों भगवान के ही अवतार हैं जिनको चतुर्व्यूह कहते हैं, वासुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो इसमें कोई जीव नहीं है, भगवान के ये तत्व हैं। अब जैसे ये बालक पैदा हुए घर में आनंद हुआ और फिर बालक वशिष्ठ मुनि की गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए। जैसे ही पढ़ के वापस घर में आए विश्वामित्र जी महाराज के घर में आते हैं और कहते हैं कि हमारे यज्ञ के अनुष्ठान में रावण के अनुचर आके मारीच और सुबाहु बहुत बड़ा विघ्न डाल रहे हैं, महाराज आपका बेटा रामचंद्र हमको दे दीजिए। रावण का नाम सुनके दशरथ महाराज ने कहा रावण से तो युद्ध मेरी पूरी सेना के साथ मैं करने जाऊं तो भी संभव नहीं है, मेरा छोटा ये बालक अभी अभी विद्यालय से आया है, कभी युद्ध किया नहीं है, महाराज इसको देना तो संभव नहीं है। विश्वामित्र ने कहा आपने वचन दिया है और दे सकते हैं तो दो, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूं। उस वक्त वशिष्ठ जी ने उठ के महाराज दशरथ के कान में कहा कि विश्वामित्र अपने आप सबको नाश करने में समर्थ है, मैं इसके बल को जानता हूं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ये रामचंद्र को अपने सारे अस्त्र शस्त्र भी देगा, और अपन जो बैठ के कल से विचार कर रहे थे कि राम का विवाह करना है, ये रामचंद्र का विवाह भी करा के आएगा। ये बात जब कही तो दशरथ महाराज का मन एकदम बदल गया। हाँ मेरा बेटा राम लीजिए, लेकिन राम लक्ष्मण के बगैर रहता नहीं है, भरत शत्रुघ्न के बगैर रहता नहीं है। आज राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जाते हैं, रास्ते में जाते हुए सरयू नदी कहां से आई उसका वातावरण पूछते हैं। आगे जाके ऋषि विश्वामित्र ने कहा आप आचमन करके आ जाइए, बैठिए, मैं राम जी आपको बल और अति बल विद्या देता हूँ, जिस विद्या के बाद कभी भूख नहीं लगेगी, कभी थकावट नहीं होगी, कभी प्यास नहीं लगेगी। और ऐसे उनको ये शिक्षा देकर आगे जाते हैं एक वन के अंदर और निर्जन वन के अंदर। तो पूछा राम जी ने कि ये गुरु महाराज ऐसे वन क्यों निर्जन पड़ा है। बोला यहाँ एक राक्षसी ताड़का रहती है, वो तो पहले देवता थे, किसी कारण से उनको राक्षसी योनि मिली है और आप इसका उद्धार जरूर कीजिए। अब तब तक तो ताड़का कहीं से आने लगी, ये पहली स्त्री मारनी पड़ रही राम जी को। राम जी संकोच कर रहे हैं, विश्वामित्र कहते हैं देर मत करो। अब ताड़का का जब उद्धार किया भगवान श्री रामचंद्र ने, तो प्रसन्न होके विश्वामित्र ने उनको सारे अस्त्र शस्त्र जो दिव्य उनके पास थे मंत्र के द्वारा उनको ये सब अर्पित किए। वहां से चल के विश्वामित्र के आश्रम में आए, वहां उनका स्वागत किया गया। उस सिद्ध आश्रम में जब पहुंचे तब राम जी और लक्ष्मण ने बाण उठा के खड़े हुए, महाराज आप गुरु जी यज्ञ कीजिए। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, तीन चार दिन तो सुख से गुजरे। और यज्ञ के पांचवें छठे दिन ऊपर से मारीच और सुभाव ऊपर से मल मूत्र और रक्त और गंध फेंकने लगे। राम जी ने सुभाव तो पहले बाण से मार दिया, मारीच को 100 युजन दूर गिराया हिंद महासागर में। जहां मारीच गिरा था उस जगह का नाम मारीची से घूम के मौरिशियस हो गया। उधर आज भी वो जो 100 योजन यहाँ से दूर वो स्थान है जहाँ मारीच जाके गिरा था। उधर आजकल जो भी लोग रहते हैं सबके घरों में हनुमान जी का मंदिर है कि हनुमान जी के हाथ में गदा होगी तो यहाँ कहीं मरीज का कोई दूसरा भाई नहीं आएगा। अब यज्ञ संपन्न हो गया विश्वामित्र ऋषि का, अब तो वापस भेजना चाहिए दोनों बच्चों को। इतनी देर में एक दूत आया महाराज जनक की दरबार से कि महाराज बहुत बड़ा एक विशाल वहाँ यज्ञ हो रहा है और धनुष यज्ञ हो रहा है वहाँ, वो बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया जाएगा, आप कृपा करके विश्वामित्र जी पधारे। अब राम जी को कहते हैं विश्वामित्र, हे दशरथ नंदन, बहुत बड़ा एक विशाल शंकर जी का दशरथ का एक बड़ा धनुष है महाराज जनक के वहाँ, आप उसका दर्शन करना चाहेंगे। विश्वामित्र तो जानते कि मुझे क्या करना है वहां जाकर, लेकिन अच्छा अभी ऐसे तो नहीं कह सकते राम को आओ चलो तुम्हारा विवाह करा के आता हूँ, ऐसे तो कहना संभव नहीं था। तो इन्होंने कहा कि आप उस धनुष, हाँ नौजवान थे, इच्छा हुई कि धनुष तो देखने चलेंगे। अब वहां से ये चले हैं, रास्ते में विश्वामित्र के अपने पूर्वजों का गांव आया है, नगर आया, तब पूछा ये कौन था, तब के महाराज गाधी का ये राज था, आज उसका वर्णन थोड़ी देर में हम करेंगे चंद्रवंश में। आगे चल के एक स्थान के ऊपर आया, बोला ये निर्जन क्या स्थान है, बोला ये गौतम ऋषि का आश्रम था और ये जो पत्थर की नारी है ये अहल्या थी, आप राम जी यहाँ आए हैं तो इसको इसका उद्धार कीजिए। राम के चरण के स्पर्श से वो नारी अहल्या का उद्धार हुआ, उस वक्त गौतम ऋषि वहां प्रकट हुए। अब गौतम ऋषि ने अहल्या को स्वीकार किया और रामचंद्र को और लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा तो पूजन किया। वहां से चल के जब पहुंचे मिथिला में, जनक जी ने उनका स्वागत किया और फिर दूसरे दिन सुबह जब पूछा, पहले जनक जी ने कहा ये ऋषि कुमार तो नहीं लग रहे हैं, ये तो क्षत्रिय लग रहे हैं, इनके भुजाओं के अंदर प्रत्यंजा के निशान है बाण उठाने के। तब कहा विश्वामित्र ने ये दशरथ नंदन राम है और इनका ये छोटा भाई लक्ष्मण है, ये हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। अब वाल्मीकि रामायण में जैसे लिखा है वो जो हम बताएंगे इस तरीके है, तुलसीकृत रामायण में तो ये है कि बड़ा स्वयंवर हुआ था, लेकिन वो स्वयंवर हुआ वो चला गया, कोई नहीं उठा सका, धनुष रखा हुआ था। आज विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज जनक ये बालक आपका धनुष देखना चाहते हैं। तो उस पेटी के पेटी जिसके अंदर धनुष रखा था 500 उसके पहिये थे और उन पहियों के ऊपर धक्का देके 400-500 आदमी धक्का देके उस पेटी को वहां लाके रखा। और जब पेटी को खोला उसको तो महाराज जनक कहते हैं देखिए ये धनुष, वैसे तो हमने एक दिन देखा कि ये हमारी कन्या जो है ये सफाई करती, इस धनुष को ऐसे उठाया, इसके नीचे से झाड़ू निकाल के सफा किया, तो हमने समझा कि ये साधारण नहीं है और ये कन्या हमको प्राप्त भी हल चलाते हुई है और हल की फल से निकली है, इसलिए इसका नाम सीता है। और ये जो जनक है इसका नाम हमने कल भी कहा था क्षीर ध्वज है, क्षीर कहते हैं हल के निचले हिस्से को, फाल को। तो ये निमी महाराज के वंश के अंदर ये जनक जो है वो 18वीं या 19वीं पीढ़ी में आते हैं, जो जनक सीता जी के पिता हुए हैं। बोला तब से हमने ये वचन दे दिया है कि जो इस धनुष को उठाएगा प्रत्यंजा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। तो कोई राजा क्षत्रिय यहां उठा नहीं पाया है आजकल। तो विश्वामित्र को प्रणाम करके राम जी ने कहा मैं इसको उठाऊं, आज्ञा है, जनक से आज्ञा ली। राम जी ने तो ऐसे उठाया जैसे हाथी गन्ने को उठाता है। अब उठाया और प्रसन्न चलाते वो धनुष टूट भी गया। अब धनुष टूट गया, यहाँ परशुराम नहीं आता है वाल्मीकि रामायण में, परशुराम बाद में आएंगे वाल्मीकि रामायण के अनुस्वार। अब धनुष टूट गया, सीता ने वरमाला पहनाई श्री राम जी को और यहाँ से संदेश गया दशरथ के पास, महाराज आपके पुत्र ने वहाँ धनुष बाण को के ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाई और जनक सुता के साथ उनका विवाह होना है, आप अपनी बारात लेकर चले। वहां से पूरी बारात दशरथ जी महाराज लेके आए और फिर जब विश्वामित्र ने कहा कि महाराज आपकी सीता जी तो पुत्री का विवाह राम जी से हो रहा है, एक बेटी आपकी और भी है और दो बेटियां आपके भाई की भी हैं और दशरथ जी के भी तीनों पुत्र अभी विवाह के योग्य हैं, आप ये उर्मला श्रुतकीर्ति आदि का विवाह लक्ष्मण भरत आदि से कर दीजिए। अब चारों कुमारों का विवाह संपन्न हुआ और दशरथ जी जब आज्ञा मांग रहे थे तब जनक जी से कहते हैं कि महाराज जनक आप देने वाले हो कन्या को, मैं लेने वाला हूँ। कन्या का पिता कन्या का दान करता है, बेटे का बाप कन्या को लेता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। महाराज आप जब आज्ञा देंगे तब हम जाएंगे। ये दशरथ ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि जिसकी कन्या होती है वो बड़ा धनी है, वो दान कर सकता है, जिसका बेटा है वो मांगने आता है, लड़की ले जाता है 25 साल की पाली पोसी, तो उसको आभारी होना चाहिए लड़की देने वाले का, न कि आजकल के विवाह की तरफ लड़की की दौड़, लड़की के साथ कितने लाख रुपए भी दोगे। ये जो नया नमूना इस दुनिया में शुरू हो गया है और ये वैदिक संस्कृति का नहीं। अब बारात जब यहां से वापस जा रही थी शादी के बाद चार कुंवारों को लेकर चार, तो रास्ते में आंधी तूफान की तरह कुछ आने लगा। वशिष्ठ जी से पूछा, गुरु जी ये को क्या है? बोला कोई आपत्ति आने वाली है, लेकिन फिर सुकन अच्छे हो रहे हैं, आपत्ति टल भी जाएगी, तब तक परशुराम जी आगे खड़े हो गए। बोला किसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है? ये शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा है? तो दशरथ जी तो बड़े भयभीत हो गए कि परशुराम सामने आ गए और ये तो बड़े क्रोध में है। दशरथ जी कहते हैं हमसे बात कीजिए, उनसे बात नहीं करते। राम तुमने तोड़ा है ये धनुष? तो देखो ये मेरे पास दूसरा धनुष है, विष्णु का धनुष, इस विष्णु के धनुष के ऊपर प्रत्यंजा चढ़ के दिखाओ, चढ़ा के दिखाओ तो मैं तुम्हारे को मानूंगा नहीं, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। राम जी ने थोड़ा बहुत निम्रता से कहा, परशुराम ब्राह्मण देव आपको प्रणाम है, अब आप कह ही रहे हैं तो विष्णु धनुष मेरे को दीजिए। परशुराम के हाथ से विष्णु धनुष लिया और विष्णु धनुष के ऊपर जैसे ही प्रत्यंजा चढ़ाई, परशुराम जी देखते रहे कि विष्णु धनुष को तो विष्णु के अलावा और कोई नहीं प्रत्यंजा चढ़ा सकता है, ये तो साक्षात भगवान है, विष्णु पधारे हैं। उस वक्त परशुराम ने कहा ठीक, अब तो राम जी कहते हैं परशुराम को कि देखो मेरा बाण धनुष के ऊपर चढ़ गया और राम बाण का मतलब खाली नहीं जाता है, अब इसको कहीं जाना चाहिए। आपको तो मैं ये बाण मार नहीं सकता क्योंकि आप हमारे गुरु विश्वामित्र के मित्र भी हैं और ब्राह्मण भी हैं और हमारे लिए पूजनीय हैं। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन हैं, आप कहें तो आपके तब से कमाए हुए परलोक की तरफ ये बाण को भेज दूं, चाहे तो आपकी गति रोक दूं। अब परशुराम कहते हैं मेरी गति मत रोकिए क्योंकि मैंने सारी पृथ्वी दान कर दी है कश्यप को, मैं वापस जाके महेंद्र पर्वत ही रुकूंगा, मुझे रोकिए मत, मेरे परलोक को नाश कर दिए, मुझे परलोक की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां परशुराम जी वापस लौटते हैं, चारों बहु घर लेकर आए हैं, रानियों ने स्वागत किया है, बड़ा आनंद मंगल अयोध्या में हुआ है। लेकिन उस वक्त भरत को, भरत का मामा अश्वजीत आया हुआ था, लेके गया केकई देश और पीछे दशरथ जी ने विचार किया कि रामचंद्र को राज तिलक देना चाहिए, राज तिलक का युवराज पद के ऊपर स्थापित करना चाहिए। ये तो बड़ा उत्सव होने लगा और दूसरे दिन इसका मुहूर्त जब निकला तो छत के ऊपर खड़ी हुई केकई की मंथरा ने देखा तो शहर के अंदर सजावट हो रही है, क्या हो रहा है आज ये? बोला कौशल्यानंदन राम जी का युवराज पद के ऊपर अभिषेक होगा। नीचे उतर के केकई को कहते तुमने सुना नहीं, राम जी का कल युवराज पद के अभिषेक होगा? बोला मैंने सुना है, बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए जैसा राम वैसा मेरा भक्त। आज मंथरा कहती है मूर्ख, कौशल्य महारानी बनेगी, राजा बनेगा, राम तो भरत को निकाल देगा, बोलिए ऐसी बातें मत करो। केकई चुप कराने का प्रयास कर रहे थे, ये मथुराओं को देवता ने भेजा था, देवताओं ने मथुरा को भेजा था, इसलिए कि भगवान रामचंद्र जल्दी रावण का अंत करे, अगर ऐसे नहीं होगा तो बहुत देर लग जाएगी, ऐसे पद्म पुराण में वर्ण आता है। और फिर मंथरा आई थी केकई के साथ, किसी को ये भी मालूम नहीं है कहाँ से आई थी, उसका कौन सा खानदान है किसी को मालूम नहीं है। अनजान व्यक्ति को घर में लाके मुसीबत नहीं पैदा करनी चाहिए। आज मंथरा ने जब कहा कि भरत को मार देंगे, तब केकई के अंदर पुत्र का मोह उत्पन्न हुआ, तो अब क्या हो सकता है, एक दिन बच गया है। मंथरा कहती है, तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे को दो वचन दिए हैं, देवासुर संग्राम में दशरथ महाराज, दशरथ उसको कहते हैं जिसका रथ 10 दिशाओं में चलता हो, 10 दिशाओं का मतलब आकाश में जाते थे, स्वर्ग में लड़ने के लिए पाताल में भी जाते थे, सब दिशाओं में 10 दिशाएं मानी जाती है सनातन वैदिक संस्कृति में, 4 तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, 4 कोने हैं, ऊपर और नीचे 10 दिशाएं होती हैं। तो महाराज दशरथ जब देवताओं के साथ संग्राम करने गए थे तो केकई ने उनको सार्थत्व करके उनकी रक्षा की थी, दो वचन दिए थे। यहाँ एक बात सुनने की है कि पति पत्नी के बीच में कोई बात हो तो नौकरानी को बताने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत थी केकई को बताने की मंथरा को कि आज मंथरा उसका मन बदल रही है। तो पति पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं वो तो रहस्य होते हैं, वो नौकरों को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा यहां से मिल रही है। लेकिन आज दो वचन तुम मांग लो, पहला वचन भरत को राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष वनवास। आज केकई कूप भवन में गई है, काले कपड़े पहन के नीचे पड़ी हुई है। महाराज दशरथ तो सभा से आके पूछते हैं कहाँ है महारानी, बताते हैं वो अंदर कूप भवन में। दशरथ ने पूरा प्रयास किया समझाने का, पहले तो कहा क्यों नाराज हो, किसने कुछ कहा है, बोला कुछ भी नहीं, मैं दो वचन मांग, दो वचन क्यों, 100 वचन मांग लिया, आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, मेरा बेटे राम का राज अभिषेक होना है आपके बेटे का। बोला आप मेरे को पहले वचन दो, दो वचन मेरे वचन का पालन करेंगे। बोलो मांगो, क्या मांगना चाहती हो, कौन मना करते हैं आपको वचन मांगने से आज। बोला मेरा पहला वचन ये है कि भरत को युवराज पद दिया जाए। दशरथ ने थोड़ा लंबा सांस लिया, कुछ बोले नहीं। बोला मेरा दूसरा वचन ये है कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। और ये सुनते ही दशरथ जी मूर्छित हो गए। दशरथ जी ने बहुत प्रयास समझाने का किया कि आप भरत को राज तिलक मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन राम को मेरी आंखों से दूर मत करो, राम के जाने के बाद मेरे प्राण निकल जाएंगे, तुम सुख नहीं भोग सकती हो केकई, तुम क्रूरता कर रही हो, तुम अपने कुल का नाश करने जा रही हो। लेकिन आज केकई टस से मस नहीं हुई, कुछ बात नहीं मानी है। दशरथ जी पूरी रात समझाने का प्रयास करें, फिर मूर्छित हो जाए, फिर और सुबह दूसरे दिन जब उठाने के लिए गा के बाढ़ आके कहते हैं महाराज दशरथ को उठाना है, तो उठ नहीं पा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने सुमंत को भेजा, मंत्री जी तुम जाके अंदर दशरथ जी का पता करो, अभी तक तो मुहूर्त निकल रहा है, राम जी का अभिषेक करने का मुहूर्त है। अंदर जाके सुमंत ने देखा तो केकई ने कहा महाराज का आदेश है कि राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए, राम जी को बुलाया जाए, मैं महाराज के मुख से सुनना चाहता हूं। सुमंतर तो बहुत पुराना मंत्री था, जानता था, तो महाराज दशरथ बोल नहीं पाए, सिर्फ सर हिला दिया। सुमंतर ने राम जी को बुलाया, राम जी वहां से बहुत जल्दी में रथ से आए, अंदर जा गए, जैसे गए पिता को माता को प्रणाम किया, तो मां पूछते हैं मां के कई पिताजी का ऐसे क्यों पड़े हैं, बहुत बहुत खुशी में रात रहे हैं, अब थक गए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, ये कुछ आपसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, बोलिए। बोला मैं बताती हूँ आपको, केकई कहती है उन्होंने हमारे को दो वचन दिए थे, आज मैं दो वचन मैंने मांग लिए हैं इनसे, मां दो वचन आपने मेरे पिता ने दिए हैं और आपने मांग लिए, क्या है मुझे बोलो। बोला पहला मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। बोला आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं लेकिन अन्याय कर रही हैं, क्या अन्याय कर रही हैं। बोला इस इतना छोटा सा अयोध्या का राज दे रही हो भरत को और दूसरे वचन में मेरे को पूरा वन का साम्राज्य दे रही हो, इसका मतलब आप भरत से अन्याय कर रही हो, मेरे को इतना बड़ा साम्राज्य दे रही हो और भरत को छोटा सा राज दे रही हो। लेकिन मां अगर मेरे पिताजी ने ये वचन दिया है तो मैं इन दोनों को स्वीकार करता हूं। दशरथ बोलता है मत मानना इसकी बात। दशरथ जी ने ऐसे कहा लेकिन राम जी वहां से फिर वापस रथ के ऊपर नहीं चढ़े, पैदल चले हैं, कौशल्या के महल में आए हैं। मां कौशल्या ने सिंहासन रखा राम जी के बैठने के लिए, बोला बेटा अभी अभिषेक में जाना है। बोला मां अब सिंहासन के बैठने का मुझे अधिक, अभी मेरा वन में जाने का, क्या बोल रहे हो, बोला ऐसे पिताजी ने मेरे को वन का राज दिया है। ये बात सुन के लक्ष्मण को क्रोध आ गया, बोला पिताजी बूढ़ा हो गया है, वो कैकेयी के बस में आया होगा, आ गया होगा, मैं अभी जाके सर उनका काट दूंगा। राम जी ने कहा शांत करो, पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कौशल्या के चरणों में नमस्कार करके सीता जी से मिलने गए। सीता जी ने कहा अभिषेक हो गया? बोला अभिषेक नहीं, अब वन में जाना है। तब सीता कहती है मैं भी साथ चलूंगी। कहां जाओगी तुम? जनक नंदनी बहुत वन में कष्ट होता है। बोला जहां आपको कष्ट होगा वहां मैं भी आपके साथ रहूंगी। मेरे पिता को ये पता होता कि आप मेरे को दुख सुख में साथ नहीं रखते तो आपकी वीरता के बाद धनुष तोड़ने के बाद भी आपके साथ विवाद है थोड़ी, अब आप मेरे को छोड़ के जाएंगे ये संभव नहीं है। तब कहा आप भी चल सर, आप भी चलिए जनक नंदनी। तब भरत ने, लक्ष्मण कहते हैं मैं आपके बगैर यहां नहीं रह सकता हूं। अरे आपको तो वनवास नहीं मिला है। बोला भाई मैं आपके साथ रहूंगा। राम जी ने कहा जाओ अपने कोष से, अपने अस्त्र आदि से दो बड़े अच्छे धनुष बाण लेके आओ। अब वहां से तैयार होकर पिता से विदा होने के लिए जब गए हैं, उस वक्त दशरथ कहता है कि आप बेटा वन में मत जाओ, इसकी बात को मत मानो, और नहीं मानते हो तो सुमंत ऐसे करो इनके साथ सेना भी भेजो, राजकोष भी भेजो। तब कैकेयी कहती है क्या मेरा बेटा भरत तुम्हारे सोने राज के ऊपर राज करेगा? इसको कोष भी दे दोगे और सेना भी इसको दे दोगे? इनको अभी इसी वक्त वन में जाना चाहिए और पेड़ की छाल के कपड़े पहन के जाना चाहिए। उस वक्त सुमंत से भी रहा नहीं गया, बोला कुल घातनी हो तुम, आज तुम राम को वनवास मिला है, सीता को तो वनवास नहीं मिला है, इसको क्यों तुम वन के वस्त्र पहना रही हो? वशिष्ठ जी को भी क्रोध आ गया, लेकिन राम मुस्कुराते हुए विदा हो रहे हैं। अब जब राम विदा होने के लिए बाहर निकले हैं तो कहा इसको रथ में लेके जाओ। सुमंत रथ के ऊपर बैठा है, दशरथ बाहर निकला है और रथ को उस वक्त देखता रहा जब तक रथ की धूली दिखाई दी, उसके बाद नीचे गिर गया। गिरते ही उठाने के लिए प्रयास, कैकेयी ने कहा मुझे हाथ मत लगाना कैकेयी, तुम अब कौशल्या अब मेरे को तुम उठा के अपने महल में चलो। कौशल्या को लेके, दशरथ को कौशल्या लेके अपने महल में गई। पुरवासी सारे पीछे चले, अयोध्या वासी राम जी के साथ, ब्राह्मण भी साथ चल रहे हैं, भगवान राम रथ में बैठ नहीं रहे हैं, नीचे उतरे हैं, ब्राह्मणों को पीछे चलना पड़ रहा है, रथ आगे आगे चल रहा है। रात को एक जगह रुके हैं और तब राम जी कहते हैं ये पुरवासी तो मेरे साथ चलेंगे तो इन ब्राह्मणों की देखभाल कौन करेगा, इनके लिए भोजन की सब व्यवस्था यज्ञ आदि की करनी पड़ेगी, इनको वापस अयोध्या में जाना चाहिए, भरत के राज में ब्राह्मण नहीं होंगे तो राज ठीक नहीं होगा। रात को जब सब सो गए तब सुमंत को कहा आप इस रथ को पहले सीधा ले जाओ फिर उल्टे तरफ ले जाओ, सुबह ये हमारा पता न लगा पाए, और रात रात में वहां से 4 बजे निकल गए। अब तो सीताराम लक्ष्मण तीनों निकल गए सुमंत के साथ। सुबह उठ के अयोध्या वासियों ने देखा कि अरे राम जी रात को चले गए, हमको पता नहीं लगा, बेचारे इधर उधर देखते हैं। फिर वहां से वापस आए, उस दिन के बाद अयोध्या वासियों ने कभी सुख नहीं देखा कि जब तक राम को नहीं देखेंगे तब हम संसार के किसी काम में नहीं लगेंगे। लेकिन राम जी वहां से आगे जाते हैं, अयोध्या की सीधा सीमा समाप्त होती है, श्रृंगेवपुर आता है जहां का निषाद राज है, उसने राम जी का स्वागत किया, बोला आप आइए, आप को वन में जाना है, आप हमारे राज में रहिए, ये राज आपका है, हम आप। और तब राम जी ने गले लगाकर कहा कि आप मेरे मित्र हो, उस निषाद को, उस भील राज को भगवान राम ने गले लगा के जब कहा आप मेरे मित्र हो और आपका राज मेरे राज के बहुत निकट है, कल कहीं अयोध्या वासी यहां मुझे मिलने आएंगे तो मेरे वन का काम पूरा नहीं होगा, इसलिए अब मैं रात को तो यहां रहता हूं, उस पेड़ के नीचे जहां रहे घास बिछाया, वो बहुत सामग्री लाया, फल फूल लाया, हीरा मोती अर्पण करने के लिए आया। भगवान राम ने कहा आज तो, कल हमको गंगा पार करनी है, आज हम उपवास करेंगे, कुछ लेंगे नहीं, अब तो केवल वन का फल लेंगे, लेकिन आपकी ये सामग्री सारी हमारे महाराज दशरथ के जो अश्व हैं, जो रथ में जुते हुए हैं, इनको अच्छी राजाई सामग्री खाने का बहुत बड़ा आदत पड़ी हुई है, इनको खिला दीजिए, हम कुछ पान नहीं करेंगे। आप उन्होंने व्रत रात को किया है, सीताराम लक्ष्मण व्रत किया, राम जी लक्ष्मण और श्रृंगराज जो श्रृंगगढ़ का राजा है निषाद, वो तो बैठे रहे जागते सारी रात। दूसरे दिन सुबह गंगा पार किया, जब गंगा पार किया तो साथ में गया निषाद राज, सामने भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, महाराज भरद्वाज ने भगवान श्री राम का दर्शन करके आनंद लिया, और जब भारद्वाज से पूछा कहाँ रहे तब उन्होंने कहा आगे जाइए, यहाँ से वाल्मीकि का आश्रम है, फिर चित्रकूट है, चित्रकूट आपके लिए बड़ा उपयुक्त स्थान है, वहां जाकर रहिए। यहां तक जाके देख के आया, रथ खड़ा था, नाव में चढ़ती हुई सीता ने जब रथ को देखा था तो दो आंसू आंखों से गिरे थे और सुमंत्र ने इसको भी देखा था। सुमंत्र ने कहा, ये कहाँ रहते हैं ये पता लगाओ, फिर मैं वापस जाऊंगा। आज वापस आके बताता है निषाद के चित्रकूट में कुटिया बना के राम जी रह रहे हैं। अब सुमंत वापस रथ लेके जाता है, घोड़े को हिला नहीं रहा है। यहाँ सुमंत्र लौट रहा है, वहाँ दशरथ जी कौशल्या को कहते हैं, मेरी आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कौशल्या तुम जरा मेरे को हाथ लगाओ, पता लगे तुम कहाँ हो। अब तो मुझे याद आ रहा है, मैं नौजवान था, शब्द भेदी बाण चलाता था, एक दिन रात को बाण चलाया था, एक ऋषि कुमार मैंने समझा, लेकिन उसका मृत्यु हो गई मेरे हाथ से। उसने मरते हुए मुझे कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं, वो वहाँ है, आप पानी ले जाकर उनको दे दीजिए। वो श्रवण कुमार का मेरे हाथ से हत्या हुई थी, उनके माता पिता ने मुझे कहा था उस वक्त कि जैसे तुम अपने हम अपने पुत्र के वियोग में आज प्राण त्याग रहे हैं, अब जल नहीं पिएंगे, ऐसे एक दिन तुम्हारे को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़ेंगे। आज कौशल्या लगता है कि वो समय आ रहा है। ये विलाप कर रहे हैं दशरथ, तब तक सुमंत आता है और सुमंत को दशरथ पूछते, समाचार दीजिए, राम जी को वापस लाए, लक्ष्मण को वापस लाए, सीता आ गई वापस, आपको कहा था सीता को तो कम से कम वापस लाना था, क्या कहा राम जी ने, क्या कहा। तब राम जी का संदेश बताया कि राम जी ने कहा है कि कौशल्या से जैसे आपका भाव रहे, ऐसे थे कई के साथ भी आप व्यवहार करना, पिताजी मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, 14 साल जल्दी बीत जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे थे, वो मत बोलना सुमंत को, राम जी ने कहा था। और सीता घोड़ों की तरफ देख के दो आंसू बहाए थे जब ये समाचार दशरथ ने सुना कि राम नहीं आएगा। उस वक्त दशरथ जी ने अपने प्राण निकल गए और उस वक्त आदमी जल्दी भागता हुआ गया, कई देश भरत को लेकर आया। आने में 3-1 दिन लग गए, लेकिन आते ही भरत ने सुना अयोध्या देखा, भरत को देखकर लोग थू थू जैसे करते हैं, ऐसे कर रहे हैं, भरत को बहुत दुख हुआ। माता के पास आया, माता कुछ होकर कहती है, बेटा तुम राज तिलक लो। बोला क्या कह रही हो, राम को राज तिलक मिलना चाहिए, मेरे को राज तिलक कहां से मिलेगा। बोला बेटा मैंने 2 वचन ऐसे मांग लिए थे। आज भरत कहते हैं, आप मेरी माँ नहीं हो, आज मेरे को कलंक लगा दिया आपने। वहां से लौट के कौशल्या के महल में राम जी जब आते हैं, कौशल्या कहती है, बेटा आप तुम खुश हो गए, तुमको राज मिल गया। तब पांव पकड़ के कौशल्या के भरत कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं ये किसने कैसे किया है, मैं शपथ खा के कहता हूँ पिताजी की, आपकी, माता जी, राम जी की, के राम जी को मैं वापस लेके आऊंगा, नहीं तो मैं राज के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज कौशल्या ने गले लगाया है। वशिष्ठ जी ने कहा, जल्दी करो, पिता की पहले अंत्येष्टि क्रिया पहले करनी चाहिए। अब तो ये कार्य करने के बाद सभा जुटी और कहें कि आपको राज तिलक देंगे। उस वक्त भरत कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में कभी बड़े भाई के होते हुए छोटे ने राज किया है, ऐसा संसार के अंदर कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। राज के लिए बाप को मारा है लोगों ने, भाइयों को मारा है, लेकिन भाई के राज के लिए दूसरे भाई ने राज का त्याग किया है, ऐसा उदाहरण सवाय रामायण के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। और ये कथा जब रामायण की इस देश के अंदर की जाती थी, उस समय में जिस समय में धर्म बहुत संकट में था, तब पेड़ के नीचे सुनती थी जब माताएं ये कथा, तो घर में भाई लड़ते थे तो कहती थी, अरे भाइयों में प्रेम होना चाहिए, संसार के राज का परित्याग करके भी अपने भाई के हक को देना चाहिए। ये स्त्रियों में झगड़ा होता था तो सीता की तपस्या और त्याग और पति की बात करके घरों के अंदर शांति हुआ करती थी। इस रामायण ने हमारी संस्कृति का बहुत बड़ी सुरक्षा की है। उस समय में जब बहुत संकट था इस देश के ऊपर, धर्म का पालन बहुत कठिन हो गया था उस वक्त में, आज भरत कहता है, मैं आदेश करता हूं कि मैं राज तिलक नहीं ग्रहण करूंगा और मैं राम जी को वापस मना के लाऊंगा, आप रास्ता तैयार करो यहां से। अब पूरी रथ सेना लेकर, गुरु वशिष्ठ जी को लेकर, माताओं को लेकर भरत चला है राम जी को लेने के लिए। श्रृंगेरपुर के वहां जब दूर से देखा निषाद राज गुहा ने कि अयोध्या के ध्वज वाले रथ और बहुत बड़ी सेना आ रही है, तब निषाद राज ने अपने सैनिकों को कहा, लगता है भारत राज मिलने के बाद राम को मारने के लिए जाता हो, इसलिए सैनिकों गंगा जी के तट के ऊपर तुम छुपके बैठे रहो, मैं जाके भरत से मिलके देखता हूं कहां के उसका भाव मित्रता का है कि शत्रुता का है, मेरे इशारे का इंतजार करना। हमारे जीते जी गंगा पार नहीं कर पाएगा भरत अगर राम का शत्रु होगा तो। ये श्रृंगेरपुर का राजा आगे जाता है, राजा के लिए थाल में फल फूल लेकर हाल लेकर ऐसे स्वागत करने के लिए। उस वक्त सुमंत कहता है, भरत जी राम जी ने इनको मित्र करके गले लगाया था। भरत रथ से कूद के गले लगता है उस निषाद राज के कि आप राम ने आपको मित्र बनाया है तो आप हमारे लिए पूजन। आज समझ गया श्रृंगेरपुर का राजा कि ये मित्र भरत राम को मनाने जा रहा है। फिर भी पूछ लिया कि आप इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जा रहे हैं। बोला हम राम जी को राज तिलक दे के वापस मनाने के लिए जाने रहे। तब श्रृंगेरपुर पे निषाद राज ने वो स्थान दिखाया जहाँ सीता राम जी सोए थे। सीता की साड़ी का कोई पल्लू का टुकड़ा एक धागा दिखा। अरे ऐसे यहाँ सोए थे, यहाँ जटाएं बांधी थी इन्होंने, यहाँ वट वृक्ष के दूध से आज भरत ने जटाएं बांधी है, आज भरत ने वही वनवास का वेश धारण किया है। अब यहाँ से भरत पैदल चल रहा है गंगा पार करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम के अंदर। भरद्वाज ने जैसा उनका स्वागत किया है, सेना तो सब उस स्वागत में खुश हो गई सवाय रानियों के, वशिष्ठ के और भरत के, बाकी तो वेमोहित हो गए। लेकिन फिर आज जब ये सेना चित्रकूट के निकट पहुंच रही है तो भरत जी को राम जी कहते हैं, देखो तो इतनी सारी ये धूल कहाँ से उड़ रही है, किसका ध्वज है, कौन सी सेना है। ऊपर चढ़ के लक्ष्मण देखता है, अरे ये तो अयोध्या का ध्वज दिख रहा है। लगता है कि भरत हमारे से शत्रुता करके यहाँ भी लड़ने के लिए आ रहा है। मेरे को आज्ञा दीजिए भाई कि मैं अकेला जाके युद्ध करूंगा, यहाँ भरत नहीं आ सकता है। राम जी कहता है, क्या पता भरत आ रहा है कि पिताजी का रथ आ रहा है, कुछ मालूम नहीं। और फिर मित्रता के लिए आ रहा है भरत के धर शत्रुता, ये भी जानकारी नहीं है। और मेरी आज्ञा है कि आप नीचे उतर के आओ। अब यहाँ से लक्ष्मण तो शांत हो गया, भरत एकदम निषाद को साथ लेकर और सुमंत के साथ भागता भागता आगे आता है। और जिस जगह राम जी और भरत का मिलन हुआ है, दो भाई जहाँ गले मिले हैं, वो कमदगिरी की परिक्रमा में चित्रकूट में, वहाँ धरती पिघल गई है। राम के और भरत के पांव, वो भी डेढ़ डेढ़ फुट के पांव के निशान आज भी पत्थर के अंदर वहाँ देखने को मिलते हैं। अब भरत जी तो भगवान के चरण पकड़ के बैठ गए, भगवान ने गले लगाया। तब तक वो माताजी और वशिष्ठ पहुंच गए। पिताजी के मृत्यु का सुन के राम जी विलाप करने लगे, उनको पिंड दान करने के लिए अंगूदी का फल लेके अर्पण करने लगे। कौशल्या की आंखों से आंसू आए कि राजा दशरथ के लिए आज पिंड दान में ये फल, तब लिखा है शास्त्र में जैसी स्थिति जैसी चीज है वही अर्पण की जा सकती है वन के अंदर। आज भरत जी जब आज भरत कहते हैं आपको चलना पड़ेगा, बहुत बाहर बैठ गए। बोला राज शासन अब मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। आखिर इस बात के ऊपर निर्णय हुआ कि राम जी ने अपनी खड़ाऊ दे दी, चरण पादुका दे दी, उसको सर के ऊपर उठा के भरत जी वापस लौटे और नंदी ग्राम में अयोध्या से बाहर धरती को खोद कर दो फुट नीचे भरत रहने लगे कि राम जी धरती पे सोते हैं तो मैं उससे नीचे रहूंगा। और यहां से फिर चित्रकूट को राम जी ने छोड़ दिया, कहा अब ऋषियों को यहाँ इतनी बड़ी सेना आने के साथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं। चित्रकूट से निकल के पहले अत्रि के आश्रम में गए। अत्रि के आश्रम में सीता को नारी धर्म का उपदेश अनुसुईया ने दिया, सुंदर वस्त्र आभूषण दिए जो कभी मेले नहीं हो। राम जी और सीता यहाँ से दंडक अरण्य में प्रवेश किया। यहाँ से पहली बार बहुत से ऋषियों ने कहा बहुत असुर यहाँ हमारे को संकट देते हैं। तब राम जी ने एक जगह पे टेक ली, टेक लेने का मतलब वचन किया, उस स्थान को राम टेक कहते हैं। नागपुर से 125 किलोमीटर की दूरी पे वो स्थान है, उसको बोलते हैं राम टेक। कि राम ने यहाँ वचन किया था कि किसी भी असुर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा दंडकारण्य में। और फिर यहाँ से बहुत से असुरों का वध करते हुए ऋषियों से मिलते हुए अगस्त ऋषि ने फिर उनको वहां से कहा कि आप गोदावरी के तट के ऊपर नासिक में पंचवटी में जाकर विराजमान हुए और वहां से अस्त्र शस्त्र भी कुछ विशेष दिए। जब वो उस तरफ जा रहे थे, बीच में बहुत असुरों का वध किया, उसका वर्णन न करके जाते हुए किसी बहुत बड़े पक्षी को गिरा हुआ देखा, समझा असुर है। लेकिन उसके पास जाते पहुंचे तो राम जी को कहा, मैं दशरथ का मित्र हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। जब आप वन में फल फूल लेने जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा। मेरा नाम जटायु है, आज जटायु भी इनके साथ हो गए, चारों पंचवटी में आए। पंचवटी इसलिए कहते हैं पांच वट वृक्ष वहां हुआ करते थे। आज भी नासिक में जाएंगे तो पंचवटी के स्थान उसके सामने काले राम का मंदिर बोलते हैं, उसके अंदर गुफा में सीता जी को छोड़ के जाया करते थे जब बाहर जाते थे। अब वहां पंचवटी में जब राम जी रहने लगे, आनंद से रह रहे थे, इस बीच में स्थान है वहां सुरपंखा आती है, और सुरपंखा के आने के ऊपर सुंदर नारी बन के आई है तो राम जी को कहती है, राम जी के मेरे साथ तो पत्नी मेरी है, ये लक्ष्मण देखो अकेला आया, इसके साथ विवाह कर लो। लक्ष्मण के पास जाती है, वो बोलती है देखो मैं तो इसका दास हूँ, मेरे से विवाह करोगी तो तुम्हारे को नौकरानी होना पड़ेगा, इसी से विवाह कर लो। तब वो कहता है सीता की वजह से राम मुझसे विवाह नहीं करता, इसी को नोच के खा लूंगी। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण अब इससे मजाक मत करो। अब लक्ष्मण ने उसके कान और नाक काट दिया। यहां से चिल्लाती हुई सुरपंखा जो सुंदर नारी बन के आई थी, राम जी ने उसकी तरफ देखा नहीं, उससे बात भी कर रहे थे तब सीता के ऊपर दृष्टि डाली हुई थी, स्त्री के ऊपर आंख से दूसरी को देखने से काम आंख के द्वारा प्रवेश हृदय में करता है, ये राम जी शिक्षा देते हैं। सुरपंखा को भी आंख खोले, आगे आप देखेंगे सुंदर नारी बन के पूतना आएगी तब कृष्ण आंख बंद कर देंगे, खोलेंगे ही नहीं। तो ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। और फिर जाके सुरपंखा ने खरदूषण को कहा, जनस्थान के ऊपर रावण का आउटपोस्ट था, यहां से आने वाले सबको रोका जाए, इसलिए खरदूषण के जो 14,000 सैनिकों के साथ आक्रमण हुआ, राम जी ने सबको मार दिया, खरदूषण मर गए, त्रिशरा मर गया, लेकिन वहां से अकंपन नाम का एक कांपता हुआ बचा हुआ राक्षस जाके रावण को बोलता है, महाराज जनस्थान के ऊपर खरदूषण 14,000 सैनिक मारे गए, एक दशरथ का पुत्र राम लक्ष्मण था, उन्होंने सबको मारे हैं, उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है सीता। ये समाचार सुना रावण वहां से अपने रथ के ऊपर चढ़ के मारीच के पास गया। मारीच को कहा, मारीच आप मेरे साथ चलो, मेरा सहयोग करो। बोला क्या करना है? बोला पंचवटी में सीता को हरण करके लाना है जो राम और लक्ष्मण के साथ। मारीच बोला कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका शत्रु है, ये किसने आपको बताया? ये आप, मैं राम के बाण को जानता हूँ, 100 योजन दूर गिरा था। महाराज अगर आप सुख चाहते हो, लंका में शांति चाहते हो, तो राम से झगड़ा मत मोल लो। रावण वापस लौट गया, मारीच की मशवरे को मान लिया। रावण आके बैठा, तब तक सुरपंखा नाक कटी हुई आई और कहा कि तुम यहाँ ऐश करो, आराम करो, भोग करो, तेरी बहन का ये हाल किया, तेरे भाइयों को मार दिया, और उनके साथ जो स्त्री है वो तुम्हारे साथ शोभा देती है, वो कहाँ उस वनवासियों के साथ होनी चाहिए। आज सुरपंखा ने जो रावण को दोबारा उकसाया, रावण फिर गया मारीच के पास। मारीच ने कहा फिर आपको ये पट्टी किसने पढ़ाई, फिर क्यों आप अपना नाश करना चाहते हो? लेकिन आज रावण कहते हैं मैं सुनने नहीं आया हूं, तुमको मेरा आदेश पालन करना पड़ेगा, या तो मेरे साथ चलो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। मारीच के मरना ही है तो राम के हाथों मरना ठीक है, तुम्हारे हाथों मर के क्या करूंगा, चलो। आज मारीच हिरण बना है सोने का, लक्ष्मण कहता है सोने का पहले तो हिरण होता नहीं है, इसका मतलब माया का है, माया है। सीता जी कहती है तो ठीक है, लेकिन राम जी माया के पीछे जा। राम जी कहते देखिए सीता ने इतना कष्ट हमारे साथ सहा है, कभी कुछ हमसे मांगा नहीं है, आज पहली बार ये हिरण मांग रही है। अगर ये राक्षस भी है तो राक्षस को मारना है, हमारा धर्म है वैसे भी मारना है, और ये हिरण है तो पकड़ के लाएंगे, सीता खुश हो जाए, तो इसमें कोई आपत्ति दोनों बात में है नहीं, वैसे भी हमको मारना ही है इनको। हिरण के पीछे राम जी आते हैं, हिरण आगे आगे जाए, कभी पीछे जाए, कभी इधर हो कभी उधर हो, दिखे नहीं। राम जी थक गए, बोला हाँ पकड़ में तो आएगा नहीं, इसलिए बाण मारा, बाण मरते से मारीच ने हे लक्ष्मण बचाओ कह दिया। ये आवाज सुनते सीता कहते लक्ष्मण आपके भाई का आवाज सुना। बोला मैं भाई मेरे भाई को जानता हूं, इस धरती के ऊपर त्रिलोक में राम को कोई मार नहीं सकता है। आज सीता ने कहा आप भरत के भेजे हुए लगते हो और आप चाहते हो राम मर जाए तो मुझे भोगो, तुम्हारा ये इच्छा है। जब सीता ने ये वचन कहे तो लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई, लक्ष्मण जी की आंखें लाल, और राम और लक्ष्मण जी ने ये वचन किया हुआ था कोई भी राम के प्रति कुछ शब्द कहेगा तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज भरत को क्रोध आया है, धरती माँ की बेटी है सीता, धरती माँ ने भरत को प्रणाम किया है, लक्ष्मण को प्रणाम किया है कि मेरी बेटी की रक्षा करो, तुम्हारा क्रोध मेरे ऊपर उतार दो। लाल आंखों से जो धरती की ओर देखा है, धरती के ऊपर वो रेखा बनी है जो सीता के चारों ओर अग्नि की रेखा बन गई है, ये भरत का क्रोध था असल में, और जो धरती ने धारण किया है और धरती ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए वो रेखा बन गई है। अब लक्ष्मण वहां से कठोर वचन सुन के सीता के निकले हैं, रास्ते में राम मिले। तुमने क्यों आ गए? लक्ष्मण सीता को किसके सहारे छोड़ के आए? बोला ऐसे कहा, बोला स्त्री ऐसे बोलती रहेगी, तुम्हारे को मेरे वचन का पालन करना चाहिए, मेरी आज्ञा का उल्लंघन। बोला मेरा वचन था, मैं कभी आपकी आज्ञा, मेरे आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले का मैं सर काटता। लेकिन कहा मैं सीता को मार भी नहीं सकता था। दोनों भाई विलाप करते आते हैं। इतने बीच में रावण वहां ब्राह्मण के वेश में, वो साधु के वेश में नीचे उतरता है। असली सीता यहां जब रावण मांगने आता है सीता से भिक्षा, तो कार की वजह से, अग्नि की कार की वजह से अंदर नहीं जा पाता, तो वापस लौट रहा है। तो सीता ने कहा कि ब्राह्मण घर से ऐसे जाए अच्छा नहीं। सीता के अंग की प्रशंसा भी रावण ने की और सीता ने कहा मैंने सुना ये मेरे से अपराध हो गया। उस वक्त सीता असली जो सीता थी, उस वक्त अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव की गोद में अग्निदेव की पत्नी सुहा, सुहा अग्नि में करते है ना, सुहा ने सीता को गोद में लिया। अब अग्निदेव किसी सीता को हाथ नहीं लगा सकता है, सीता को अग्निदेव ने अपनी पत्नी सुहा को लिया। सुहा ने सीता को उठाया और छाया सीता को वहां खड़ा कर दिया। असली सीता अग्निदेव लेके चले गए। अब रावण ने छाया सीता को यहां से उठाया, जो सीता का छाया रूप था। ये कूर्म पुराण में बहुत विशाल लिखा है और चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण को ये कूर्म पुराण से पढ़ के दो अध्याय सुनाए थे, जिस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन दोपहर के समय भोजन बनाया नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने किया भोजन, बोला अभी तो लक्ष्मण लकड़ी लेने गया है, जब वन से आएगा तब लकड़ी लाएगा तो भोजन बनेगा। महाप्रभु कहते हैं इतना राम के प्रेम में इसको मगन है कि ये वन में अभी सोच रहा है। फिर जब उसको जगाया तो उसने जल्दी भोजन बनाया, लेकिन स्वयं भोजन नहीं कर रहा है। महाप्रभु ने बोला आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? बोला मैं सीता को कैसे, रावण ने हाथ लगाया तब से मैंने भोजन छोड़ दिया। आज आगे चल के महाप्रभु ने कूर्म पुराण का वो पत्ता देखा जिसके अंदर ये लिखा था कि मां छाया सीता को रावण उठा के गया, असली सीता तो अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। तब उस ब्राह्मण का उद्धार किया। यहाँ रावण जा रहा है, रास्ते में जटायु रावण से युद्ध कर रहा है। वचन दिया था जटायु ने कि मैं रक्षा करूंगी सीता की। आज जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया, रावण का रथ तोड़ दिया, रावण को घायल किया, सीता नीचे गिर पड़ी। रावण के साथ युद्ध बहुत हुआ। आज जटायु के पर जब रावण ने कटे हैं, जटायु नीचे गिरा है, लेकिन अपने वचन को सिद्ध किया, सीता की रक्षा में प्राण देने को तैयार था। रावण यहां से आगे गया, एक पर्वत आपके यहां थोड़ा दूरी पे ऋषि मुख पर्वत के ऊपर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता ने अपने कपड़े के अंदर कुछ आभूषण फेंके और सीता को तो रावण लेके आगे चला गया लंका में। और राम जी यहां से वापस ढूंढते हुए जटायु को देखते हैं, तो पहले तो समझा कि इस राक्षस ने सीता को खाया है, लेकिन जटायु ने जब समाचार सुनाया तो रावण को थोड़ी देर के लिए सीता भूल गई, और राम जी को थोड़ी देर के लिए सीता भूल गई, और जटायु को गोद में बिठाकर पिता दशरथ का जिस तरीके से श्राद्ध तर्पण करते हैं, ऐसे जटायु का आज भगवान ने अपने हाथों से तर्पण किया। भगवान के लिए भक्त चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, उससे भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना साधारण व्यक्ति से करते हैं। जटायु ने कहा यहां से रावण उसको उठा के ले गया है। आगे जाते हैं तो एक राक्षस है जिसके पेट के अंदर मुंह है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, और निकमंद उसका नाम है, और उसने दोनों राम और लक्ष्मण को ऐसे बाजू में पकड़ लिया है। आज तो दोनों, लक्ष्मण कहता है मुझे आप छोड़ दीजिए, आप इसको मार दीजिए। अब उस वक्त दोनों ने अपनी तलवार निकाल के उसकी जब दोनों भुजाएं काटी है, तब उसने कहा आप दशरथ नंदन राम हो, अब ऐसे करो मेरे शरीर का पहले अग्नि संस्कार करो कि खड्डे में रखो, क्योंकि मेरे को साफ था कि जिस दिन मेरी भुजाएं कोई कटेगा तब मेरा उद्धार होगा। जब उसका उद्धार हुआ तब उसने कहा मैं आपको रास्ता बताता हूं, आपको सीता मिलेगी, आगे जाएंगे तो वानर राज सुग्रीव आपकी सहायता करेगा। यहां से ये संदेश मिला है। तब पिंपा सरोवर के ऊपर आके सबरी से भगवान रामचंद्र मिलते हैं, जो मतंग ऋषि के कहने के ऊपर कई सालों से रोज प्रतीक्षा कर रही थी कि राम जी आ जाएंगे। ऋषि के वचन के ऊपर, गुरु के वचन के ऊपर इतना विश्वास था। महीने गुजर गए, साल गुजर गए, रोज रास्ता साफ करती थी, रोज फल ला के रखती थी, रोज जल भर के रखती थी, एक दिन राम जी आएंगे। और एक दिन राम आ ही गए, और सबरी ने प्रेम से राम जी की सेवा की, और उसके बाद सबरी ने तो भगवान के धाम चली गई प्राण त्याग कर। वहां से ऋषि मुख पर्वत की तरफ जाते हुए हनुमान से भेंट हुई। हनुमान ब्राह्मण के रूप में आए थे, राम जी ने उनसे बात नहीं की, छल के रूप से राम बात नहीं करते हैं। लक्ष्मण ने बात की उनसे थोड़ी देर के लिए, फिर हनुमान ने अपना परिचय दिया, दोनों को कंधे के ऊपर उठाया, ऋषि मुख पर्वत के ऊपर अग्नि जलाकर आज सुग्रीव और राम की मित्रता हुई है, और फिर पहले सुग्रीव ने अपने दुख बताया कि मेरी पत्नी को मेरा भाई बाली ले जाके बैठा है अपने घर में, और फिर राम जी ने कहा पहले मैं तेरी पत्नी को तुम्हें वापस दिलाऊंगा, फिर तुम मेरी सहायता करना, मैं तुम्हारी मित्रता निभाऊंगा। फिर तो परीक्षा भी ली सुग्रीव ने, राम जी की परीक्षा ली, और भगवान परीक्षा देने के लिए भी तैयार हो गए। अपनी मित्र के 7 पेड़ों को एक बाण से जब गिराया तब वो समझ गए कि ये राम जी मेरी रक्षा कर सकते हैं। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर बाली को ललकारा सुग्रीव ने, दोनों को पहचानने में राम जी को संकोच हो रहा था। बोल बाली से पिट के जब वापस सुग्रीव आया तो कहने लगा मुझे मरवाना ही था, तो फिर ऐसे क्यों मेरे को भेज दिया। बोला मैं दोनों को पहचान नहीं सका, ये माला पहन के कल जाना तो मैं तेरे को पहचान पाऊंगा। दूसरे दिन जब सुग्रीव ने बुलाया बाली को, तब तारा ने कहा बाली कल तुमसे पिट के गया है सुग्रीव, अकेला नहीं है, कोई उसके साथ ही आया, आज तुम मत जाओ, आज मुझे लगता है कि आपका जीवन के ऊपर संकट है। बाली कहता है पहले तो वो मानव उसके पास जो बैठा है उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए वो मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, और ललकारता है तो मुझे जाना ही है। मना करने के ऊपर भी आज बाली बाहर आया है, पेड़ों के पीछे से राम जी ने बाण चलाया है। बाली जब गिरा है नीचे तो राम से जो वार्तालाप करता है वो भी बड़ा अद्भुत है। राम जी कहते हैं देखिए आप पहले तो ये सब वन प्रदेश अयोध्या का राज है, आपने अपने भाई की पत्नी को वहां से उठा के रखा है, इसलिए मेरा ये धर्म था कि मैं भरत के राज की रक्षा में आपका वध कर दूं। और उसके बाद बलि ने कहा जो कुछ भी है ये मेरे गले में जो सूर्य देव की दी हुई बाली इंद्र का पुत्र है, इंद्र देव की दी हुई माला सूर्य पुत्र सुग्रीव है, ये अपने बेटे अंगद को सुग्रीव को देता है और कहता है मेरे बेटे अंगद का अब आप ध्यान करना। भगवान ने आश्वासन दिया, तारा रोने लगी, अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा लक्ष्मण ने जाकर बनाया। बरसात के 4 महीने भगवान जी प्रतीक्षा की, सुग्रीव मौज में लग गया, घर के अंदर भगवान का वचन भूल गया, लक्ष्मण को भेजा याद दिलाने के लिए। आज तारा ने आकर लक्ष्मण को शांत किया, लक्ष्मण क्रोध में है, भगवान ने कहा डांटना डराना जरूर लेकिन हमारा मित्र है उसका अपमान मत करना। लेकिन सुग्रीव को उसी वक्त हनुमान ने कह दिया, सुग्रीव ने कहा मैंने चारों ओर से सब वानरों को बुलाया है, तब तो सुग्रीव भी आया, चारों ओर से वानर इतने आने लगे जैसे कोई समुद्र वानरों का यहाँ आ गया हो, और फिर 4 दिशाओं में वानर ढूंढने के लिए सीता को जाते हैं। जिस दिशा में अंगद के नेतृत्व में हनुमान जामवत आदि जाते हैं उसके ऊपर विश्वास करके आज बलराम जी ने अंगूठी दी है। कैसे बाकी तो 3 एक महीने में आया, सुग्रीव ने कहा एक महीने में आ जाना नहीं तो फिर आपका जीवन मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो सुग्रीव जो अंगद के साथ टोली गई थी वो एक महीना बीत गया, किसी गुफा में फंस गए थे, किसी प्रभा के बहुत बड़े वन प्रदेश में फंस गए थे, वहां से निकल के समुद्र के किनारे पे आए, वहां एक बहुत बड़ा पक्षी निकल के कह रहा है आज मेरा भोजन ये बंदर अपने आप आ गए हैं, भूखा हूं बहुत समय से इनके खाऊंगा। तब अंगद कहता है हनुमान कहता है एक तो वो पक्षी था जिसने राम जी की सहायता की थी और दूसरा ये है कि हम राम दूतों को खाना चाहते हैं। ये सुनकर वो कहता है किसका नाम लिया, किसने सहायता की थी, आपने जटायु, जटायु का नाम लिया, अरे जटायु तो मेरा छोटा भाई था, मेरा नाम संपाति है, अरे छोटे जब थे जटायु ऊपर उड़ के सूर्य की तरफ जा रहा था, मैंने अपने पक्षों से उसकी रक्षा की थी इसलिए मेरे पक्ष जल गए, मैं यहां गिर पड़ा हूं, मेरे भाई ने राम जी की सेवा की थी, मैं आप मेरे को उठा के बाहर निकालो, मैं यहां से 100 योजन तक देख सकता हूं कि 800 योजन तक मेरी दृष्टि जाती है, ये मेरे पंजों से रावण की छाती के ऊपर इनके निशान है, मैं उनसे संधि कर बैठा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं मैं यहां से देख रहा हूं कि सीता रावण के पास है, अब वहां से जाकर लाओ, लेकिन एक मेरे ऊपर कृपा करो, समुद्र में मुझे स्नान कराओ, मेरे पक्ष नवे आ जाएंगे, मेरे पर नए आ जाएंगे। आज संपाति के नए पर आए हैं, संपाति वहां से उड़ा है, वानरों ने 100 योजन उड़ने का विचार किया, अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता हूं, आऊंगा कोई पता नहीं आऊंगा, जामवत ने कहा मैं तो ऐसे भगवान वामन के पांव की प्रदक्षिणा कर ली थी लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अंगद को कहा तुम तो हमारे सेनापति हो तो तुमको नहीं जाने देंगे, ये नेम नहीं है, युवराज भी हो। तब जामवत ने कहा हनुमान तुम क्यों चुप बैठे हो, भगवान का भक्त कभी अहंकार से अपना ऐसे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, जब वैष्णव कृपा करके कहते हैं कि आप ये सेवा करो, तब हनुमान को जब ये कहा गया आज हनुमान उठे हैं और हनुमान पर्वत के ऊपर चढ़ गए हैं, पर्वत के ऊपर हनुमान चढ़ के विराट रूप जब उन्होंने किया है और पर्वत के ऊपर चढ़ के भगवान राम की प्रार्थना करके उड़ने के लिए जब जैसे प्रयास किया है, यहाँ से फिर सुंदर कांड शुरू होता है। यहाँ तक किष्कंधा कांड है और पूरा पर्वत हिला है, पीछे पेड़ उसके हवा में गए हैं, समुद्र में गिरे हैं फल फूल, और आकाश में उड़ते हुए हनुमान की परीक्षा लेने के लिए पहले तो देवताओं ने उस पर्वत को खोला, मीनाक पर्वत को, तुम बाहर निकलो, हनुमान जी को आसन रास्ते फल फूल दो। आज हनुमान जी को पर्वत जब निकला है, कहा यहाँ बैठ के विश्राम करो। हनुमान जी ने पर्वत ने कहा, तुम्हारे पिता वायुदेव ने मेरी रक्षा की थी जब इंद्र ने हमारे पर काट रहे थे, आज आप यहाँ फल फूल कुछ लीजिए। हनुमान ने हाथ लगा के कहा कि आपका जो आप आतिथ्य सत्कार करते हैं ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन राम कामा नहीं विश्रामा, राम के काम में मैं रुक नहीं सकता, ये संभव नहीं। यहां से देवताओं ने देखा बल तो बहुत है, थकेगा नहीं, बुद्धि का तो पता लगाएं कि कितनी बुद्धि है हनुमान की। अब नागों की माता सरसा को भेजा, मुंह खोल के खड़ी हो गई और कहा कि इसके अंदर जाओ, मेरा भोजन हो, अभी भेजा है राम जी ने आपको, मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। हनुमान ने कहा राम जी का काम करूं, सीता का समाचार लाऊं, फिर आपके मुंह में चला जाऊंगा। बोला कोई वापस मरने को नहीं आता, अभी जाओ। बोला अभी जाओ तो मुंह बड़ा करो, वो मुंह बड़ा करने लगी, हनुमान और बड़े हो गए। जब उसका मुंह बहुत संयोजन हुआ तो हनुमान जी इतने छोटे हो गए, अंदर से घूम के बाहर आ गए। सुरसा ने कहा आप जाओ, अभी मेरी आशीर्वाद है बेटा। यहां देवताओं ने देखा इनकी बुद्धि भी बहुत ज्यादा है, हनुमान की बल भी है बुद्धि भी है। आगे जाते हुए सिंघनी जो छाया ग्रहणी है, जाते हुए किसी की छाया को पकड़ के नीचे खींचती, हनुमान को पकड़ लिया। हनुमान कहता मेरा उड़ना कैसे बंद हो गया। अब नीचे देखता है तो किसी ने पकड़ के रखा है मुक्का मार के, और सिंघनी का जब सर फोड़ दिया हनुमान जी ने। अब ये तीनों को मारने के बाद हनुमान जी उतरे हैं लंका में और शाम का इंतजार कर रहे हैं। रात को छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, लंकनी ने रोक दिया। लंकनी ने जब रोक दिया कहा कि तुम चोरों की तरह अंदर क्यों जाते हो। बोला चोर तुम्हारा मालिक है जो सीता को चुरा के लाया है, चोरी करके और फिर मालिक आते हैं उसको ढूंढने, उसको रोकती हो। एक दे मारा मुक्का लंकनी को, लंकनी के मुंह से खून निकला। लंकनी ने कहा बेटा मेरे को ब्रह्मा ने कहा था कि जब कोई वानर तुम्हारे को प्राप्त करे तब रावण का अंत समझना, अब तुम जाओ जो तुम्हें करना है लंका में करो, मेरी आशीर्वाद। तो सीता रूपी भगवान की भक्ति देनी प्रदान करने वाली भगवान की भार्या जो जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र में हरे का उच्चारण करते हैं, ये राधा को संबोधन है। अगर कोई सीता राम का भक्त है तो ये सीता को संबोधन है। तो कोई भक्त सीता से कृपा मांग कर भगवान राम की भक्ति चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, तो संकट क्या आते हैं भक्त के लिए ये सुन लेना चाहिए। पहले मीनाक पर्वत निकला, खाओ पियो आराम करो। जब साधु बन जाते हैं तो लोग कहते हैं बैठिए भोजन कीजिए, आसन लीजिए, दक्षिणा लीजिए। हनुमान कहता है इसमें फंस गए तो भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी, भोग में फंस गए तो भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और दूसरा सुरसा है, ये अहंकार हो जाता है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। इस अहंकार का मर्दन कैसे किया जाता है, सुरसा का मुंह बड़ा होगा तो हनुमान छोटे हो गए, जब छोटे बनेंगे निम्रता से आगे बढ़ेंगे तो फिर भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो सिंघनी थी छाया ग्रहणी, ये ईर्ष्या है, ये एनवी है। ईर्ष्या का मतलब है दूसरे के अंदर बुराई देखना। ये छाया को काले को पकड़ती है, आदमी में जो काला होता है, काले का मतलब जो दाग होता है उसको देख के पकड़ती है। ये ईर्ष्या करने वाले लोग भगवान की भक्ति करने नहीं देते हैं, दोष देखते हैं दूसरों का। इनका इलाज है मुक्का मार के उनका सर फोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपको आगे भगवान की भक्ति में बढ़ने नहीं देंगे। और लंकनी तो ऐसे है चोरी करके आया रावण और कहती है चोर हनुमान को। ऐसे भगवान के जब भक्त बनते हैं तो लोग कहते हैं ये साधु बन गए अभी हमारे काम के नहीं है, उल्टा बात करते हैं कि आप हमारे काम के नहीं हो। इन लोगों को सुधारने के लिए थोड़ा मुक्का हल्का मारना पड़ता है, तब ये कहते हैं नहीं नहीं आप अब जाओ, आप अच्छे हो, भक्ति रहो। अब हनुमान जी ने देखा लंका में कहीं सीता नहीं दिख रही है, रावण के महल के अंदर देखा। हनुमान ने कहा मैं स्त्रियों को देख रहा हूँ, ये ऐसे अच्छा तो नहीं लगता है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। फिर हृदय में देखा कि नहीं मैं सीता को ढूंढ रहा हूँ, वो स्त्री ही है, वो मेरी माँ है। तब रावण के महल में कुछ देखा सुंदर स्त्रियां, बोला ऐसे सीता नहीं रह सकती है। थक गया हनुमान, पुष्पक विमान को भी देखा और घूमते हुए तब उसको यहाँ वाल्मीकि रामायण में विभीषण से मिलने का संकेत नहीं है, तुलसीदास की रामायण में जरूर है। अशोक वाटिका में सीता को राम जी ने हनुमान जी ने देखा पेड़ के ऊपर बैठे, रावण आते हुए देखा, रावण से वार्ता भी सुनी। रावण जब चला गया धमका के डरा के, तब हनुमान ने ऊपर से कहा कि अब आकर्षण कैसे करूं, राम कथा कहना शुरू कर दी। राम कथा कहना शुरू कर दी, फिर नीचे से उतर के आए, तब सीता ने उनसे पूछा कि कैसे राम है, उनकी पहचान दो। तो राम की सारी कथा उसकी पहचान बताई, विशेष शब्द बताए जिनसे राम सीता के बीच में संवाद होता था। फिर राम जी की अंगूठी जब दी, तब सीता जी ने उन अंगूठी को ऐसे गले लगाया जैसे राम जी मिले हैं। और सीता जी को हनुमान ने कहा फिर आप भी मुझे कुछ दीजिए, राम जी पूछेंगे। वो चूड़ामणि, उनकी जो चूड़ामणि थी उन्होंने दे दी। और फिर ये भी कह दिया राम जी को मेरा संदेश देना कि कौवा जामवन इंद्र का बेटा जयंत मेरे पांव, मेरे को सिर्फ खून निकाला था, आपने तो एक तिनके में ब्रह्मास्त्र पढ़ के और उसके पीछे भेजा था। आज मैं रावण के पास एक साल होने को पूरा आ रहा है, अभी तक आपने मेरा देखभाल आपका संभाल क्यों नहीं लिया है, और मैं अब यहाँ ज्यादा रही नहीं रख सकती। हनुमान जी ने कहा कि मां मैं अभी आपको उठा के ले चलूं वापस राम जी के पास। हरे कृष्ण, कोई और स्त्री होती तो कहती जल्दी करो यहां से उठा के ले चलो, लेकिन सीता कहती है हनुमान जी मैंने अनजाने में पर पुरुष को हाथ लगाया, वो रावण मेरे को उठा के आया, अब जानबूझ के मैं किसी और पुरुष के पास साथ जाऊं ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। वैसे तुम मेरे बेटे हो वो तो अच्छी बात है, और दूसरा अगर आप मुझे वापस चोरी लेके जाओगे जैसे रावण लेके आओ, इसमें राम का नाम तो नहीं होगा। अगर राम आके और रावण से मुझे वापस ले जाएगा तभी राम का जो 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 महत्व है वो दुनिया जानेगी। और फिर आप उठा के मुझे यहां से जब ले जाएंगे रावण के साथ युद्ध करना पड़ेगा, इतना बड़ा समुद्र फाड़ना पड़ेगा, कहीं कुछ मैं गिर गई हो गया तो राम जी मेरा वह सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेटा मेरी आशीर्वाद है आप राम जी को संदेश दे देना। तब हनुमान कहता है माता मुझे भूख लगी है कुछ खा लो। तब तो अशोक वाटिका सारी को उजाड़ दिया और अशोक वाटिका के अंदर फिर रावण का बेटा भी आया, अक्षय कुमार को मार दिया, मेघनाथ ने ब्रह्म फांस में लगाया। हालांकि हनुमान को ब्रह्म फांस में पकड़े कोई नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हनुमान का देखूं तो सही रावण का बल कितना है। रावण की दरबार में आसन नहीं मिलने के ऊपर अपने पूंछ के आसन के ऊपर बैठ गया। उस वक्त विभीषण ने कहा कि दूत को नहीं मारना चाहिए, और विभीषण की बेटी त्रिजटा सीता की हमेशा सहायता करती थी। ये दो बातें हनुमान ने नोट की थी। आज हनुमान की पूंछ जलाने की जब बात हुई है तो हनुमान ने पूंछ को जलाते जलाते पूरी लंका को जला दिया। विभीषण का एक घर बचा था और उस वक्त हनुमान पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में कूदते हुए डरते हुए कहते हैं ऐसे तो नहीं अशोक वाटिका में सीता ही कहीं जल गई हो। और उस वक्त जब अग्नि चारों ओर फैल रही थी सीता प्रार्थना कर रही थी हे अग्निदेव अगर मेरी पतिव्रता से और राम भक्ति से आप संतुष्ट हो तो मेरे बेटे हनुमान को आंच नहीं आनी चाहिए। और वायुदेव कहता है मेरे पुत्र को अग्नि का प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हनुमान की तो पूछ को कुछ नहीं हुआ। हनुमान फिर आया अशोक वाटिका में सीता को जीवित देखा कि मैं समझता हूं कि इनको अग्नि ने जलाए इनकी कृपा से तो मैं बचा हूं। आज आज्ञा लेकर माता से कूदा है, किलकारी करते हुए आते देखा हुआ जामवत कहता है जरूर पता लाया है सीता के, इसलिए हनुमान खुश दिख रहा है। हनुमान कहेगा वापस मत जाना, हम साथ जाएंगे, श्रेय मैं अकेला नहीं लूंगा, काम हम सब साथ करके जाएंगे, टीम वर्क करना चाहिए। काम हनुमान अकेला करके आया था लेकिन श्रेय सबको देना चाहता है। अब सारे यहां से वापस लौटते हैं। अंगद का बहुत बड़ा एक शहद का हनी का गार्डन है, सब हनी पी के मदमस्त होने लगे। अंगद वहां जो सेवक था उसने जाके कहा कि सुग्रीव को आपके बगीचे को उजाड़ दिया है। अंगद आदि ने बोला ये समाचार बहुत अच्छा है, अगर वो पता सीता का नहीं लाते तो इतनी हिम्मत नहीं करते, निश्चित रूप से सीता का पता लाए हैं इसलिए मेरे बगीचे को उजाड़ा है। मधु के राम जी ने कहा जल्दी बुलाइए। अब राम जी के पास सब आए तो अंगद आदि ने रिपोर्ट दी कि सीता का पता लगा है वो रावण की लंका में। तब राम ने कहा किसने पता लगाया, तब हनुमान बोले हैं, पहले दूसरे ही बोले हैं। हनुमान बोले, हनुमान ने जब वो चूड़ामणि दी जो उनकी थी तब राम जी ने उसको देख के अपने सिरदे से लगाया, बोला अब जल्दी से आक्रमण करना है, चलो सेना को तैयार करो। ऐसी दुनिया के अंदर किसी ने सेना नहीं बनाई है जिस सेना के ऊपर एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ, जीरो बजट आर्मी है राम जी की। ये बंदर है, खाने के लिए फल फूल अपना खुद खाते हैं, घर बनाते नहीं है, अनाज चाहिए नहीं, अस्त्र शस्त्र चाहिए नहीं, पेड़ पत्थर मारते हैं, ऐसी सेना दुनिया में आज तक किसी के पास नहीं थी जो जीरो बजट आर्मी हो। राम जी की ये आर्मी यहाँ से निकली है, समुद्र के ऊपर पुल बांधने की बात आई है, तब पत्थरों को डाला है, समुद्र पहले नहीं माना, इस बीच में विभीषण आता है, शरणागति होता है। विभीषण ने पहले कहा कि समुद्र की प्रार्थना करो, मित्र की बात को मान तो लिया, लेकिन जब शरण नहीं माना समुद्र, तो भगवान ने बाण जब उठाया, थरथर कांपता हुआ समुद्र आया, बोला मर्यादा रखो, सेतु बांधो, पत्थर सब तरे, सब चल के राम जी को उठाया, हनुमान ने अंगद ने उठाया लक्ष्मण को, और ये सब दूसरे तरफ गए हैं। भयंकर युद्ध के अंदर रावण के सारे भाई मारे गए, पुत्र मारे गए, अंगद को लक्ष्मण ने मारा, मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 साल ब्रह्मचारी रहा हो और नहीं सोया हो, और ये लक्ष्मण ने तप करके, और इसको ये लक्ष्मण के अंदर 14 साल के ब्रह्मचर्य का पालन और जागने की शक्ति थी, और तो इसलिए लक्ष्मण के द्वारा अंगद का वध हुआ, और फिर रावण को भगवान श्री रामचंद्र ने उद्धार किया है, और सीता को लेने के लिए भेजा गया। सीता पालकी में आ रही थी, राम जी ने कहा नहीं, इनको बोलो चल के आए, ताकि मेरे ये भक्त सारे उनका दर्शन करें, देखना चाह रहे हैं। सीता जी ने उस वक्त, हनुमान ने कहा था ये राक्षसी आपको बहुत संकट दे रही थी, कहो तो माता जी इनको दंड दे दो। सीता कहती है नहीं, आप राम के भक्त, दूसरों को पर दया करना तुम्हारा धर्म है, इनको संकट, इन्होंने संकट दिया, इनका धर्म था, हमारा धर्म दया करना है। ऐसी सीता के अलावा और कोई मां नहीं कह सकती है। आज सीता जब वहां पहुंची है तो राम जी कहते हैं अब मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया, आपको रावण से आजाद कर दिया, आपको जहां जाना है वो जाओ। सीता के पांव नीचे से जमीन निकल गई, क्या कह रहे? बोला पर पुरुष के साथ 1 साल तक रही है, अब इसके लिए यही है, लक्ष्मण तुम ऐसे करो अग्नि का प्रबंध करो, इसको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। सब ऐसे शांत हो गए, बहुत बड़ा अग्नि का आग जली, सीता ने प्रार्थना की अपने सत्यव्रता के ऊपर, पतव्रता के ऊपर अग्नि के अंदर प्रवेश किया। उस वक्त अग्निदेव ने असली सीता को निकाल के राम जी को अर्पण कर दिया, और छाया सीता अग्नि में फिर अलोप हो गई। यहाँ वापस अग्नि परीक्षा से असली सीता वापस अग्निदेव ने भगवान राम को दी। सीता की तरफ मुस्कुराते राम जी ने कहा ऐसे में स्वीकार करता तो लोग कुछ कहते, लेकिन ये परीक्षा सबके सामने हुई है। अब वहां से विभीषण कहता है कुछ दिन मेरे पास रहो, राजतिलक तो पहले ही आपने मुझे दे दिया था। राम जी कहते अब टाइम पूरा हो रहा है, भरत जी को एक दिन लेट पहुंचा तो भरत प्राण त्याग देगा। तब कहते हैं पुष्पक विमान है, इसके अंदर चढ़ो। आज विभीषण भी चढ़ा है, अंगद भी चढ़ा है, सुग्रीव भी चढ़ा है, सीताराम लक्ष्मण विमान को किष्कंधा में उतारा है, सुग्रीव की पत्नियों को साथ लिया है सीता को साथ देने के लिए, ऊपर से सब समाचार देते हुए विमान उतरा है भारद्वाज आश्रम में, हनुमान को पहले पहुंचाया भेजा है भरत के पास। भरत को जब ये हनुमान को देखा और हनुमान ने कहा राम जी आ रहे हैं, भरत ने हनुमान को गले लगा के कहा राम का समाचार लायो, हमारे लिए तुमने हमारे को प्राण दान दे दिए, अब तो सारे गुरुजन आए हैं, माता जी आए हैं, राम जी के स्वागत की तैयारी हो रही है अयोध्या में। और उस वक्त दूसरे दिन सुबह पुष्पक विमान को देखते हुए भरत जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए उतरते हुए, अब तो राम जी को बड़े स्वागत के साथ अयोध्या में प्रवेश करा के राज तिलक राम जी का हुआ है। और इसके बाद उत्तरकांड की कथा आज न करके आगे बढ़ते हैं। यह संक्षेप रूप में राम कथा का वर्णन है जो बहुत अद्भुत है, मर्यादा की है। आगे चंद्रवंश के वर्णन के अंदर अत्रि का बेटा सोम और सोम का बेटा बुध, और बुध ने जो सूर्य वंश में महाराज सुदामन्यु था अपने विवस्वत मनु का बेटा, वो जब लड़की हो गया था तो उसके साथ विवाह करके और एक पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था पुरवरवा। तो चंद्रवंश शुरू होता है अत्रि बुद्ध पुरवरवा। अब पुरवरवा बहुत सुंदर था और वरुण और मैत्र ने श्राप दिया था उर्वशी को कि तुम मानव भावनाएं रखती हो, मानव जैसा तुम्हारा विचार हो गया तुम मानव लोक में जाओ। नारद ने कहा उर्वशी तुम्हें मानव जाके जाने के रहना है तो पुरवरा के साथ शादी कर लो। आज उर्वशी और पुरवरा मिले हैं, दोनों ने शादी की है। उस वक्त उर्वशी ने 3 शर्त रखी है, बोला मेरे से शादी करनी है तो मैं तेरे साथ रहूंगी जरूर, लेकिन 2 भेड़ के बच्चे मेरे साथ आए उनको मैं पुत्र के समान मानती हूँ, इनकी तुमको रक्षा करनी है पहली बात, दूसरी बात केवल शुद्ध घी में पकी हुई चीजें मैं खाऊंगी, और तीसरी बात तुम्हारे को मैं कभी नंगन अवस्था में अपने घर के बाहर न देखूं कमरे से बाहर। तीन शर्तें। इससे पहली बात ये समझ में आती है कि देवता केवल शुद्ध घी है, उससे चीजें बनी हुई खाते हैं। कोई भी दुनिया वाली बेकार चीजें देवता लोग नहीं खाते। जब तक हमारे देश में भी शुद्ध घी लोग खाते थे, तब तक उनके जो लक्षण थे वो देवताओं जैसे थे। जब से तेल के ऊपर आए हैं, तब तक दूसरों का तेल निकालना शुरू कर दिया। शुद्ध घी गया, देवताओं के लक्षण समाप्त हो गए। कितना शुद्ध घी शक्तिशाली होता है। एक गांव का आदमी था, अपने बेटे के लिए अपने घर की गाय का घी ले जा रहा था और ट्रेन के अंदर चढ़ा तो भीड़ के अंदर डब्बा कहीं टांग दिया, ट्रेन खड़ी हो गई। अब तो चेक करते हुए ट्रेन कैसे खड़ी होगी, ट्रेन होती इसके डब्बे में देखा कि डब्बा लटका हुआ है चेन में जिसके ट्रेन को रोकते हैं। बोला ये डब्बा किसका है, बोला मेरा है। बोला इससे गाड़ी खड़ी हो गई, बोला इसमें शुद्ध घी है, ये गाड़ी इसमें शक्ति इतनी है, गाड़ी तुम्हारी रुक जाती है इससे। तो ये शुद्ध घी जो है ये बहुत शक्तिशाली किसी जमाने में हुआ करता था और देवता केवल घी का ही भोजन का सेवन किया करते थे। कहीं वर्णन नहीं है और अधिक नीच स्तर के भोजन का। अब तो बहुत बड़ा आनंद से रह रहा है महाराज पुरवा। इंद्र ने कहा उर्वशी कहां चली गई, गंधर्व जाओ उसको वापस लाओ। गंधर्व वहां से आए, रात को भेड़ के बच्चे चुराए। भेड़ के बच्चों को जाते हुए देखे उर्वशी कहती है तुम तो स्त्री की तरह पड़े हो, अपने आप को मर्द मानते हो। मेरे दो बेटों को लेके कोई गया तुम उनकी रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने आप को मर्द मानते हो, कैसे मर्द हो तुम, चूड़ी पहन के यहां पड़े हो। अभी तो क्रोध आ गया, क्षत्रिय था, तलवार उठा के निकला लेकिन वस्त्र पूरे नहीं थे, बाहर निकला। गंधर्वों ने दो भेड़ के बच्चे तो छोड़ दिए लेकिन ऐसा प्रकाश किया कि नग्न अवस्था में देख लिया पुरोवा को उर्वशी ने। उर्वशी ने कहा मैं जाऊंगी, तुम मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए और तुम्हारे को मैंने नग्न अवस्था में। उर्वशी चली गई और पुरोवा रोने लगा, दुखी हो गया, प्रेम उसके में इतना अंधा था, पागलों की तरह भटकता हुआ। एक दिन कुरुक्षेत्र में देखती है पांच पुरुषों के साथ उर्वशी मिल गई। उस उर्वशी को कहता है आप मुझे छोड़ के कहां चली गई, आप तो बहुत मुझे दुख देके गई है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। उर्वशी कहती है स्त्री की दिल को नहीं जानते हो, स्त्री की दिल तुम्हारे को काट के खाएगी, तुमको नहीं समझते कि तुम्हारा तुमको बुद्धि कब आएगी, तुम नहीं समझ सकते हो मैं अप्सरा हूं, देवलोक से आई हूं, तुम्हारे साथ प्रेम कैसे कर सकती हूं। लेकिन पुरवाल ने उसको छोड़ा नहीं, तो बोला साल में एक बार तुम्हारे साथ केवल मिलूंगी और यहां कुरुक्षेत्र में मिलूंगी। फिर एक साल के बाद मिली, उससे पांच पुत्र उत्पन्न हुए पुरोवा महाराज को, और पुरोवा महाराज को उनमें से पांच पुत्र भी उत्पन्न हुए। और महाराज पुरोवा ने फिर यहां सत्ययुग समाप्त हो रहा है, तब एक वर्ण था हंस, तब कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव हंस वर्ण था, ओम का उच्चारण था, एक वेद था। अब त्रेता युग शुरू हुआ और पुरोवा महाराज ने यज्ञ करके और उर्वशी के लोक में जाने का प्रयास किया। उर्वशी ने कहा गंधर्व तुम्हारे को दूसरी मुझे दे देंगे। गंधर्व ने उसको अग्नि के लिए दूसरी स्त्री दी, उसको उसने छोड़ दिया और त्रेता युग में यज्ञ करके पुरवा तो उर्वशी को भोगने के लिए चला गया। पुरवा का वंश आगे चला, जो आगे जो पुरवा का वंश चला है, इस वंश के अंतर्गत अपने को एक राजा मिलता है आगे आकर, महाराज गाधी। ये महाराज गाधी की एक बेटी थी, उसका नाम था सत्यवती। उसकी शादी करने के लिए रिचक ऋषि आया ब्राह्मण, तो गाधी महाराज ने देखा ये ऋषि कैसे मेरी बेटी का पालन करेगा, तो एक शर्त रखा कि 1000 घोड़े सफेद और एक कान काला ऐसे लाके दो तो फिर तेरे को मेरी लड़की देंगे। ऋषि समझ गया कि ये राजा मुझे लड़की नहीं देना चाहता है। वरुण की जाके उसने प्रार्थना की और घोड़े लेके आया एक कान काले वाले। अब सत्यवती के साथ विवाह हो गया रिचक ऋषि का। गाधी की पत्नी ने अपनी बेटी को कहा सत्यवती को कि तुम्हारे पति को कहो कि हमें पुत्र संतान हो दोनों को, तेरे को भी बेटी हो मेरे को भी हो, इसलिए कोई पढ़ के चारू दे दे। ऋषि कृष्ण ने चारू पढ़ा, अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण बेटे के लिए पढ़ा और अपनी सास क्षत्रिय थी उसके लिए क्षत्रिय के लिए चारू पढ़ा। दोनों लोटे यज्ञ में रख के चला गया स्नान करने। मां ने समझा बेटी जो इसकी पत्नी है ऋषि की, इसके लिए जरूर अच्छा पढ़ा होगा। अपनी पत्नी से सब प्रेम करते, हो सकता है अच्छा हो, हमारा हो सकता है अच्छा नहीं हो। बेटी से बदल दिया, जो बेटी वाला चारू था वो मां ने पी लिया, मां वाला चारू बेटी ने पी लिया, ये हो गया बदल अदल बदल। ऋषि ने आके देखा, अरे आपने गलत काम कर दिया, अपनी पत्नी को कहा तुमने जो ब्राह्मण के बेटा पैदा होना था उसकी जगह पे तुमने चारू पिया, अभी तेरे घर में घोर क्षत्रिय पैदा होगा। अब तो सत्यवती हाथ जोड़ के कृपा बोला, ठीक है एक पीढ़ी का तेरे को मैं शांति हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा पोता जरूर वो बड़ा खतरनाक क्षत्रिय जैसा काम करेगा। तो फिर रीचक के घर में जमद अग्नि का जन्म हुआ, जमद अग्नि का बेटा परशुराम हुआ, जो बहुत क्रूर क्षत्रिय थे, अपने क्षत्रियों का 21 बार वध किया। और गाधी के घर में क्षत्रिय की जब एक विश्वामित्र हुआ, जो ब्रह्म ऋषि हुए, आगे जाकर गाधी का बेटा ब्रह्म हो गया ब्रह्म ऋषि, और यहाँ परशुराम का जन्म हुआ। तो आगे कहते हैं कि जमद अग्नि का विवाह हुआ रेणुका के साथ, उसको चार पुत्र आदि हुए, सबसे छोटा परशुराम था। अब और लंबी कथा न करके कथा ये करते हैं कि जमद अग्नि के पास एक गाय थी जो सबकी इच्छा पूरी करती थी, और उस वक्त हय वंश का राजा कार्तवीर अर्जुन राजा सहस्र बाहू कहते थे, रावण को दो ही आदमियों ने पकड़ के मारा था, एक सहस्र बाहू अर्जुन ने नर्मदा को रोक के बैठा था और रावण की सामग्री पूजा की बह गई और युद्ध में रावण को बांध के रख दिया था सहस्र बाहू ने, उसका दादा पुलस्त ऋषि आया था वो वापस लेके गया था वहां से। और दूसरा बाली ने अपनी कांख के दबा के 3 समुद्रों का चक्कर लगाया था जब रावण बाली को पकड़ने के लिए आया था। तो ये सहस्र बाहू अर्जुन गाय लेना चाह रहा था परशुराम के पिताजी जमद अग्नि की, और जबरदस्ती गाय ले गया और परशुराम गया, सहस्र बाहू की को भी मार दिया, उसके 100 बेटे में से 99 को मार दिया और वापस वहां से लौट आया। पिता ने कहा तुमने राजा का वध किया, जाओ तीर्थ करके आओ। तीर्थ भी करके परशुराम वापस आया और एक दिन जंगल में चले गए चार भाई, तो पीछे सहस्र बाहू अर्जुन का बेटा आया और जमद अग्नि का गर्दन काट दिया। रेणु का रोती रही चिल्लाती रही, जमद अग्नि का गर्दन काट दिया गया, ऋषि मारा गया। मां ने बुलाया राम 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 रक्षा करो, परशुराम भागता हुआ आया, भाई आए गर्दन नहीं है, गर्दन उठा के ले गए काट के। परशुराम कहा ये आप सर रखिए मां, मैं गर्दन वापस लेके आता हूं। परशुराम गया, पहले तो उस एक राजा को मारा, फिर पूरे क्षत्रियों को मारा, समंतक पंचक में जहां सरस्वती बहती है 9 कुंड रथ के भर दिए, रथ की नदियां बहा दी चारों ओर से, और परशुराम सर अपने पिताजी का लाया, सर धर के साथ लगाया, यज्ञ किया, उसका पिताजी फिर जीवित हो गया। और फिर वहां से ये धरती सारी परशुराम ने बांट के यज्ञ करने वालों को दी और सब दिशाएं, और कश्यप को ये पृथ्वी देकर, और महाराज भगवान श्री परशुराम महेंद्र पर्वत के ऊपर रहने लगे। आने वाले कल्प में परशुराम जी सप्तऋषियों में एक ऋषि बनेंगे, ये भगवान परशुराम के प्रकट्य की कथा इसके अंतर्गत आती है। आगे इस वंश के अंदर आगे चला तो इसके अंदर एक महाराज हुए हैं ययाति, यति और ययाति। बड़ा तो तपस्या करने लगा, छोटे महाराज ययाति को राज मिला। अब ययाति महाराज की कथा ऐसे आती है कि ययाति महाराज एक बार शिकार करके आ रहे थे, तो शुक्राचार्य की बेटी, उसका नाम है शर्मिष्ठा, उसकी मित्र है, उसका नाम है देवयानी। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी ब्राह्मण की, और राजा विश्वरवा है उसकी बेटी है समृष्टा, दोनों मित्र हैं। नहा रही है एक तालाब में और कन्याओं के साथ, शंकर जी वहां से गुजरते हैं, शंकर जी को देख के जल्दी बाहर निकले, गलती से कपड़े देवयानी के समृष्टा ने पहन लिए। अब तो मित्रता छुट्टी, उसे बोलती है हम ब्राह्मण तुम राजाओं को राज तिलक देते हैं तब तुम राजा बनते हो, और तुमको मेरा कपड़े पहनने का अधिकार क्या है? यज्ञ के अंदर से जैसे कौवा उठा के जाए घी को, इस तरीके से तुमने मेरे कपड़े उठाए। और समृष्टा को भी क्रोध आ गया, उसने कहा तुम क्या समझती हो, तुम ब्राह्मण दक्षिणा देके हमारे से भीख मांग के जाते हो तब खाते हो ना। अब क्रोध ऐसा आ गया, सारे कपड़े उतार के समृष्टा देवयानी के, समृष्टा तो राजा की बेटी थी ना, क्रोध में सारे कपड़े उतार दिए देवयानी के और कुएं के अंदर फेंक दिया अंधे ने। अब देवयानी कुएं में, समृष्टा घर चली गई। ययाति महाराज कुएं के ऊपर पानी के लिए झुके तो नीचे से कन्या को देखा, कपड़े नहीं पहने हुए, अपना ओत्री का कपड़ा नीचे फेंक दिया, हाथ दे के बाहर निकाला देवयानी को। देवयानी ने कहा आपने मेरे को हाथ से दे के निकाला है तो अब मेरा हाथ ग्रहण कर लीजिए, वैसे भी मेरे को बृहस्पति के बेटे कच्छ ने श्राप दिया है कि ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह होगा नहीं। तो आज देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ। देवयानी लेकिन वापस अपने पिताजी को आके जब ये समाचार दिया, पिताजी क्रोध में भर के राजा के पास गए, राजा ने प्रणाम करके कहा कि अब ये लड़कियों के झगड़े की गलती है, अब एक बस आप जिसमें खुश हो वो मैं उसमें मैं राजी हूं। तब कहा मेरी बेटी का विवाह ययाति के साथ हो रहा है, तेरी बेटी समृष्टा के साथ दासी होके जाएगी। आज राजा की बेटी दासी होके गई है ययाति के घर में। और फिर और शुक्राचार्य ने कहा देखो ये आती समृष्टा के गर्भ से तुम्हारे को कोई पुत्र नहीं उत्पन्न होना चाहिए, मेरी बेटी देवयानी तेरी पत्नी रहेगी। देवयानी से पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन समृष्टा ने भी जाके कहा मैं दासी बन के आई हूं तो मेरे को भी अधिकार है पुत्र उत्पन्न करने का। समृष्टा के गर्भ में भी पुत्र उत्पन्न हुआ। ये सुनकर देवयानी भाग गई अपने पिता के पास, पीछे ययाति भागा। शुक्राचार्य को क्रोध आया, क्रोध में कहा तुम बूढ़े बन जाओ। अब तो ययाति बूढ़ा हो गया, रोने लगा कि अभी तो मेरे आपकी बेटी के साथ विवाह हुआ है, सुख भोगा नहीं है, अभी मेरी उम्र बूढ़ी हो गई है, कैसे मेरा जीवन चलेगा। तब कहा कि अब इसका एक ही रास्ता है कि कोई बेटा तुम्हारे को तुम्हारी जवानी देगा तो फिर तुम वापस जवान हो जाओगे। अब बेटा, अब ययाति वापस आके अपने बेटों को कहते पुरु एक बेटा है, एक यदु बेटा है, पांच बेटे हैं उनमें से तीन एक में से, दो दूसरे में से। यदु ने तो कहा कि मैं अभी मेरी जवानी नहीं दे सकता, इसलिए कि आगे मेरे कुल में भगवान को अवतार लेना है, उसमें मैं देर नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरों ने कहा अभी हम भोग करेंगे, नहीं देंगे। जब पुरु की तरफ देखा तो ययाति को पुरु कहता है कि पिताजी आपको मांगने का आपको मांगना पड़ा मुझसे, इसलिए मुझे शर्म आता है। आपको मांगने से, जो मांगने से पहले पिताजी के मन को जान के उसकी आज्ञा का पालन करे पहले नंबर का बेटा, मांगने के ऊपर आज्ञा पालन करे दूसरे नंबर का, और कहने के बाद भी नहीं करे वो थर्ड क्लास का, किसी काम का नहीं। ये पहचान है। अच्छा, तो भीष्म पितामह सिर्फ ऐसा पुत्र था, पिता के कहने के बगैर पिता के मन की बात को पूरी किया था, इसलिए पितृ भक्तों में किसी का नाम लिया जाता है तो भीष्म पितामह, और मातृ भक्तों में परशुराम सबसे बड़ा महान है, जिसने अपनी माता की गर्दन काटने के बाद भी रक्षा की थी, पितृ भक्त उसको अभी भी कहते हैं। तो यहां पुरु ने अपनी जवानी दे दी ययाति को, ययाति ने भोग किया, लेकिन भोग के बाद ययाति ने एक दिन देवयानी को बिठाकर एक कथा सुनाई, बकरे और बकरी की। वो अपनी ही कथा थी, बकरी कुएं में गिर गई, बकरे ने निकाली, ब्राह्मण ने श्राप दिया। ये सुन के देवयानी समझा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बोला ऐसे हमारे जीवन में हुआ है, अब ये भोग को छोड़ो, चलो तपस्या करें। तो जब ययाति जाने लगा तो देवयानी ने कहा आप मेरे को कुएं से निकाला था तो भवसागर से भी निकालो, मैं आपके साथ जाऊंगी। तब ययाति ने अपनी बुढ़ा जवानी जो थी वापस अपने बेटे पुरु को दी, पुरु को राजा बनाया, सबको छोटे को बड़ा राजा बनाया, बाकी सबको छोटे छोटे राज दिए, लेकिन जिसने अपनी जवानी दी थी पुरु को राजा बना दिया, और यहां से पुरु का वंश आगे चला है। पुरु के वंश में आगे चलकर एक महाराज दुष्यंत हुए हैं। वो दुष्यंत महाराज कणव ऋषि के आश्रम में एक दिन गए और वहां शकुंतला को देखा, विश्वामित्र और मेनिका की बेटी को। शकुंतला को देखकर दुष्यंत को वो अच्छी लगी, गंधर्व विवाह कर दिया। पूछा तुम कौन हो, मुझे मालूम नहीं है, गुरुजी को मालूम है। गुरुजी ने बताया विश्वामित्र की बेटी है। विवाह हो गया दुष्यंत का शकुंतला के साथ। दुष्यंत वापस अपने राज में चला गया। दुष्यंत को बेटा हुआ भरत, महाराज भरत। ये भरत वो है जिसका नाम भगवत गीता में अर्जुन को भगवान संबोधन करते हैं हे भरत श्रेष्ठ। ये भरत वंश के अंदर आगे पांडव आएंगे। तो ये महाराज भरत को लेकर अपने बेटे भरत, ये भरत वो जो शेर के साथ युद्ध करता था, शेर का जो है मुंह फाड़ के हाथ अंदर डालने की हिम्मत करता था, ये शकुंतला और दुष्यंत का बेटा भरत है। शकुंतला अपने बेटे को लेके गई, दुष्यंत ने पहले तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन आकाशवाणी ने कहा ये आपका पुत्र है, तो महाराज भरत फिर दुष्यंत के बाद राजा बने। महाराज भरत की तीन रानियां अवंती देश से थी, लेकिन तीनों को कोई अच्छा पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। तब भारद्वाज नाम का पुत्र देवताओं ने उनको दिया, तो इस वंश में आगे भारद्वाज आया। इस वंश में आगे चल के शांतिनु महाराज हुए। शांतिनु को भीष्म बेटा हुआ, और चित्रवीर और चित्रांगद फिर व्यास के द्वारा उसमें पांडु और धृतराष्ट्र, और फिर एक आगे चल के ये वंश चला अपना विदुर का और धृतराष्ट्र के, फिर दुर्योधन आदि हुए 6 पुत्र, और पांडु के फिर 5 पांडव हुए, फिर 5 पांडवों का वंश चलता है। ये पुरु महाराज का वंश है। और आगे यदु का वंश चला। यदु के वंश में आगे अंधक, भोज, वृषणी ये सब राज हुए। इनके अंतर्गत फिर एक महाराज देवमीड़ हुए, देवमीड़ के फिर आगे चल के वसुदेव आदि पुत्र हुए। फिर यहां कहते हैं वसुदेव का विवाह हुआ, और वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम का प्रकट्य हुआ। ऐसे करके नवा स्कंद यहां चंद्रवंश का वर्णन पूरा होता है। तब दसम स्कंद में एकदम परीक्षित महाराज कहते हैं आप मुझे चंद्रवंश का विस्तार से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन और सुना। इसलिए और मुझे श्री कृष्ण का वर्णन सुनाओ। पहले तो वो मेरे दादाजी अर्जुन की रक्षा की थी और दूसरा मेरे को मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी, इसलिए मेरा उनके साथ बहुत निकट का संबंध है। मैं कृष्ण का विस्तार के साथ और कथा सुनना चाहता हूँ और सुनने की जो ये जिज्ञासा है परीक्षित की, ये सुनना ही सबसे उत्तम और अधिक उत्तम और सरल साधन है भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन सुनना क्या है? यहाँ कहते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुनना चाहिए। सुनना क्या, सुनने से क्या होता है? बहुत सुंदर श्लोक का है, निवृत तृषय उपगीय मानाय भव औषधि भव भव मनोभिराम। भव औषधि, भव मतलब जन्म मृत्यु, उसके दवाई क्या है जिससे आदमी मौत से बच सकता है, संसार से। बोला उत्तम श्लोक गुणानुवादन, भगवान श्री कृष्ण की कथा आदमी को भव रोग से मुक्त कर देती है। ये तो बड़े महात्मा सुखदेव को भी आनंद देती है, मुमुक्षु को भी आनंद देती है, और संसारी कोई हो ना उसके लिए भी ये बड़ा आनंद के विषय है। ये दवाई है, औषधि है। बोला ये दवाई कहाँ से लेनी चाहिए? बोला कान के द्वारा ली जाती, श्रोत मनोभिराम, ये कान के द्वारा दवाई जाती है। अरे डॉक्टर कौन है, इसका किससे लेनी चाहिए? बोला सुखदेव गोस्वामी जैसा निवृत्त तृषयी कोई हो, जिसको संसार के अंदर कोई अपने इंद्रिय भोग की इच्छा न हो। कथा क्यों करता है? क्योंकि भगवान का गुण गा रहा है। अरे फिर ऐसा कौन नीच आत्मघाती होगा जो कथा नहीं सुनेगा? बहुत गंभीर विषय, परिषद महाराज कहते आत्मघाती आत्मघन कौन होगा? ऐसा कौन होगा जो अपना आत्महत्या करना चाहेगा और इस कथा को न सुनते भवसागर से पार नहीं होगा? बड़े प्रसन्न होके सुखदेव महाराज कहते हैं वासुदेव कथा पुनाति त्रियम, तीन को पवित्र कर देती है कृष्ण कथा। वक्तारम श्रोत्रम पृष्ठम, जो बोलता है उसको, जो सुनता है वो, और जो पूछता है वो। जिन्होंने कथा के लिए आयोजन करके, जिसने कथा सुनने के लिए आया, जो कथा कर रहा है, तीनों को पवित्र करती है भगवान की ये कथा। और फिर न देर लगाते हुए सुखदेव गोस्वामी एकदम कहना शुरू करें, एक बार की बात है वसुदेव सूरसेन वंश का, उसका विवाह हुआ देवकी के साथ, देवक की बेटी, महाराज उग्रसेन का भाई देवक, देवक की बेटी देवकी, और देवकी का विवाह हुआ वसुदेव के साथ वृष्णी वंशी। बहुत बड़ा धामधूम से विवाह हुआ, बड़ा सा उसको जयज दिया गया। आज देवकी के हाथ में मंगलसूत्र, हाथ में गले में मंगलसूत्र है, हाथ में अभी विवाह का जोड़ा पहना हुआ है, और विदाई के समय कंस रथ को चलाने के लिए तैयार हुआ है। भाई प्रेम दिखा रहा है, वसुदेव और देवकी पीछे बैठे हैं और रथ चला है अपने घर की ओर। पहले भाई बहन के साथ जाया करता था विवाह के बाद, आज कंस जा रहा है। आकाशवाणी कहती है दसवां गर्भ देवकी का, तेरा मृत्यु कंस मूर्ख। अब सारा प्रेम एकदम कपूर की तरह उड़ गया। आसुरी प्रकृति के लोग जो होते हैं वो तब तक प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है, उनके भोग के अंदर बाधा हुई तो उनका प्रेम एकदम समाप्त हो जाता है। आज कंस ने देवकी को उल्टे हाथ से बाल पकड़े और सीधे हाथ से खड़ग निकाली है, देवकी को नीचे खींच के डाला है, लेकिन देवकी शांत है। न कंस को कहती है कि भैया मेरे को मत मारो, न वसुदेव को कहती है कि मेरी रक्षा करो, शांत मौन। ऐसी जो माता होती है उसके पास भगवान नहीं प्रकट होंगे तो और किसके पास होंगे? न चिल्लाई है न रोई है। और उस वक्त वसुदेव ने अपना कर्तव्य समझा कि इस वक्त मेरे को मेरी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन लड़ने से काम नहीं बनेगा। कंस के हम आश्रित हैं, कंस इस वक्त राजकुमार है, उग्रसेन महाराज के राजा का बेटा है, तो लड़ने से काम नहीं मिलेगा, बल से काम नहीं मिलेगा चलेगा, बुद्धि से काम चलेगा। लड़े भिड़े नहीं, बुद्धि से, शाम दाम दंड भेद, ये सब पहले प्रशंसा की, फिर बताया स्त्री को मारने से पाप लगेगा, अपराध लगेगा, फिर आप इतने बड़े महान हो, इतने बड़े उच्च कुल के हो, ऐसे शब्द कहे कि सरस्वती कांप गई। ये तो वत्सल कैसे भक्त वत्सला होगा कि फिर सरस्वती ने दूसरी माना निकाली कि दूसरों के पशु भी लेके जाके मार देगा, आदमी तो आदमी, ये बड़ा अंतरंग। उस वक्त एक रास्ता वसुदेव को सूझा। वसुदेव ने कहा आपको सौम्य भोजराज कंस आपको देवकी से तो भय नहीं है ना, इसकी संतानों से भय है ना। तो मैं आपको वचन देता हूं, इसके सारे संतान सवाय उसके जिससे भय आपको है मैं आपको दे दूंगा। ये संस्कृत भाषा में बहुत टेढ़ा शब्द लिखा हुआ है, जिससे भय है वो नहीं दूंगा, बाकी सब दे दूंगा। ऐसा संस्कृत का अनुवाद करेंगे तो ऐसे उसका अर्थ निकलेगा। और वसुदेव के वचन के ऊपर विश्वास दुनिया करती थी। वसुदेव का एक नाम है अनंक दुमदुभी। अनंक दुमदुभी मतलब वसुदेव का जन्म हुआ तब देवताओं ने अपनी दुमदुभी अपने आप बजाई थी कि ऐसा आया है इस धरती के ऊपर व्यक्ति जिसके घर में भगवान साक्षात प्रकट होंगे। आज वसुदेव के इस वचन के ऊपर कंस भी उसके वचन का लोहा मानता था। कंस ने वसुदेव को कहा जाओ अपने घर जाओ। अपने घर गए, साल के बाद बच्चा हुआ, वसुदेव उठा के बच्चा लाया। कंस ने कहा इससे मुझे डर थोड़ी है, आठवें से है ना, ले जा। वसुदेव बोलता है कंस को ऐसे दया आ जाए, चलो कोई बात नहीं वापस ले जाते। तब तक नारद टपक के नीचे आया, आते ही बोला हे भोजराज क्या समाचार है, कहां से आ रहे हैं? देवऋषि बोला ऊपर से आ रहा हूं, देवलोक में सारे लोग जा रहे थे यदुवंश में, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आपने वापस दे दिया लड़का वसुदेव का, आठवां थोड़ी सा पहला था। ऐसे उंगलियां करके नारद ने मानू कहा गिनू तो जरा, एक दो तीन चार पांच आठ, बोला अभी यहां से गुनू, बोला एक दो, बोला आठ वाला एक हो गया कि नहीं हो गया, अब विष्णु कहां से आ गया क्या पता तुम्हारे। बोला नारद ऐसे क्यों कर रहा था, बोला नारद कहता भगवान के आने में देर हो जाएगी, अगर कंस भी दयालु हो गया तो भगवान देर से आएगा, हमको भगवान जल्दी दर्शन करने। आज कंस ने वापस देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया, बच्चे को पत्थर के ऊपर मार दिया, अपने बाप को कैद में कर दिया, उग्रसेन को जेल में डाल दिया, राजा बन गया। जरासंध उसका ससुर था, दो बेटियां अस्थि प्राप्ति थी, जरासंध का सहयोग था, असुर सारे इकट्ठे हो गए। आज छह बेटे देवकी के एक एक करके कंस ने मारे। ये छह बेटे कौन थे, इसको षड गर्भ बोलते हैं, ये देवता थे, ये ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे, इसलिए एक बड़े वैष्णव का अपराध करने के कारण इनको असुर योनि में प्राप्त हुई। ये हिरण्याकश के वहां जाके बच्चे हुए, तपस्या करने लगे, हिरण्याकश ने शाप दिया तुम्हारा बाप तेरे को मारेगा। और ये कंस काल नेमी राक्षस है जो उग्रसेन के घर में पैदा हुआ है, और ये छह बच्चे इसी के अपने बेटे हैं, और कंस के हाथों इनको मरना था, और यही बेटे यहां से मरने के बाद बलि महाराज के पास सूतल लोक में जाके रहे हैं, इसलिए द्वारका की लीला में आएगा। देवकी कहेगी कि आपने अपने गुरु का बेटा तो बहुत पुराना मरा हुआ लाके दिया था, मेरे छह बेटे मैं देखना चाहती हूँ, उनके नाम भी हैं। बलि के राज में सूतल में कृष्ण गए, उन बच्चों को लाए, माँ देवकी के स्तन में दूध आ गया, और कृष्ण ने जिस दूध को पान किया था वो प्रसाद पाकर ये बच्चे वापस देवता हुए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि ये छह बच्चे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये मन मरीचि के पुत्र से, मरीचि मन का प्रतीक से, और मन के ये पांच दोष हैं। जब तक भक्त के हृदय से ये छह दोष दूर नहीं होंगे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, हाँ ये जब तक भक्त के हृदय से नाश नहीं होंगे तब तक भगवान का हृदय में प्रकट्य नहीं होगा। आज छह ये मारे गए हैं, दोष निकल गए हैं, देवकी कंस के भय से भक्ति है, उसका हृदय निर्मल हुआ है। आज भगवान के आने से पहले भगवान का आसन आ गया है, भगवान का आसन शेष नाग है, शेष के ऊपर शयन करते हैं भगवान। आज बलराम जी देवकी के उदर में प्रविष्ट हुए हैं, और बलराम जी जब प्रविष्ट हुए हैं तब भगवान गोलोक में बैठे हुए देवी को बुलाया, देवी एक काम करो, ये जो सातवां गर्भ देवकी का है ये रोहिणी का बेटा है, रोहिणी का नित्य सुत है बलराम, मैंने उनको विनती की है गर्भ के अंदर मेरा स्थान बनाने गया, इसको यहां से खींच के रोहिणी के गर्भ में उधर में स्थापित करो, आप ये काम करो कर लोगी। एक दूसरा भी काम करना है, मेरी छोटी बहन बनकर यशोदा के घर में जन्म लेना, ये दो काम करने की वजह से तुम्हारा भारतवर्ष में बहुत पूजा होगी, विंध्याचल में तुम्हारी पूजा होगी, गौरी के नाम से होगी, काली के नाम से होगी, वैष्णवी देवी के नाम से होगी, विंध्याचली के नाम से होगी, भागवत में ये पूरा वर्णन है। अब देवी वहां से सातवां गर्भ देवकी का वहां से कंस के ऊपर लोगों ने आरोप लगाया कि गर्भ गिरा दिया है, लेकिन रोहिणी के गर्भ में बलराम जी सात दिन पहले प्रकट हो गए, और रोहिणी रह रही थी नंद बाबा के घर पे, अब वो भागवत लिखती है, वसुदेव भगवान के चिंतन में इतने मगन है कि भगवान जो विश्व आत्मा है, भगवान अपी विश्व आत्मा, विश्व आत्मा मतलब सबके हृदय में जो रहता है, जो सबके हृदय में रहता है, और उससे भी ज्यादा विश्व आत्मा का अर्थ क्या है, जो सबसे प्रेम करता है। भगवान अपी विश्व आत्मा, कैसा है ये भगवान, भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को अभयदान देता है, भक्तों को भय से मुक्त करता है। आवेश मन अनंक दुद्भी, आज वसुदेव के मन के अंदर सब अंशों के साथ जितने पहले अवतार हुए नरसिंह आदि उन सबको अपने अंदर समाकर भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए, और वसुदेव के मन से देव रूपी देवणी देवकी के हृदय में प्रविष्ट हुए। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है, ऐसे वसुदेव के हृदय से भगवान, घंटी बजा के बजाओ, भगवान वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रविष्ट हुए। किसी साधारण स्त्री पुरुष की तरह बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, भक्त के हृदय में भगवान का प्रवेश होता है, और गुरु अपने हृदय में प्रकट किया हुआ भगवान अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। मानो देवकी की दीक्षा हो गई, वसुदेव ने देवकी के हृदय में भगवान को स्थापित किया, देवकी के अंदर से प्रकाश निकलने लगा, वसुदेव से भी प्रकाश निकलने लगा। आपने बहुत बड़े फोटो देखे हैं ना, साधु महात्मा भगवान के चारों ओर प्रकाश होता है साधुओं के, क्योंकि भगवान हृदय में प्रकट होता है, तो प्रकट जिसके हृदय में भगवान है वो बड़ा प्रकाश उससे निकलता है। और इतना देवकी के अंदर से प्रकाश निकलता था, फिर भी वो ऐसे लग रही थी जैसे जैसे आग के ऊपर राख पड़ी हुई हो, उसका कोई लाभ न ले। लेकिन कंस ने उसको देखा, कंस का मन भी बदल गया, कहा लगता है कि इसके गर्भ में वो आ गया है जो मुझे मारेगा। लेकिन भगवान के आने से जिसके दिल में भगवान है तो सामने वाले का मन बदल जाता है। कंस कहता है स्त्री को मैं मारूंगा ये तो पाप हो जाएगा, इतनी कैसे सुंदर लग रही है देवकी, ऐसे करके कंस तो वापस चला गया। कंस वापस चला गया और देवता सब लोग सूत की गृह में आए, जहां कंस का कारागृह था। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, नारद आदि सब अंदर आए, और भगवान जो अभी गर्भ के अंदर है देवकी के, उनको प्रार्थना करने लगे। दुनिया के अंदर गर्भ का हमेशा निंदा की जाती है कि गर्भ के अंदर कौन जाएगा जन्म मृत्यु के, लेकिन भगवान जब उदर में आते हैं तो देवता शंकर आदि प्रार्थना करने आए कि भगवान आप अगर अवतार, पहले तो आपका वचन ही सत्य है, आपने कहा था आप आएंगे, और यहाँ ये भूमिका में मैं बात बता नहीं पाया आपको, पृथ्वी के ऊपर आतिताई राजाओं का भार हो गया था, पृथ्वी गाय का रूप धारण किया था, और फिर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई थी, ब्रह्मा जी शंकर जी को लेकर क्षीर सागर पे गए थे। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने पृथ्वी के संकट को मैं दूर करूंगा, और आप सब यदुवंश में अवतार लो, श्री का प्रिय करने के लिए मेरे साथ राधिका भी आएगी, आप अपने स्त्रियों के साथ वहां जाना, ऐसा भगवान ने ब्रह्मा जी को वचन दिया था और धरती माता को आश्वासन दिया था। तो आज देवता कहते हैं आपका वचन सत्य है, सत्यवर्तम, आपने जो कहा था वो सत्य था, आप आज आ ही गए, हमको कहा था आने के लिए, और आप अवतार न लेते तो संसार के लोग भवसागर से पार कैसे जाते, आपके चरणों की नौका को बनाकर भवसागर पार साधु संत करते हैं, और जाने के बाद दूसरों के लिए नौका छोड़ के जाते हैं भक्ति के रूप में, सब शास्त्र के रूप में, जिनके द्वारा दूसरों का उद्धार होता है, लेकिन वो लोग जो आपके अंगरी की अवहेलना करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम ब्रह्म को जानते हैं, वो फिर ब्रह्म से भी नीचे उनका पतन हो जाता है। ऐसे करकर सब देवता कहते हैं वसुदेव देवकी अब आपके दुख के दिन पूरे हो गए, अब भगवान आपके घर में प्रकट होने वाला है। देवता बाहर निकले हैं, उस वक्त देवकी और वसुदेव के सामने अद्भुत बालकम चतुर्भुजम शंख चक्र आयुध हाथ में लेकर, चार हाथों में शंख चक्र गदा क्रीट कुंडल पहने हुए अद्भुत बालक को वसुदेव ने देखा, प्रार्थना कर दी, और फिर देवकी ने प्रार्थना की, और फिर भगवान बोलने लगे, कहा वसुदेव और देवकी आपने तपस्या की थी, आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा था, मेरे जैसा और हो ही नहीं हो सकता है, इसलिए तीन बार मैंने आपके पुत्र होने का संकल्प किया, पहले मैं आपके घर में पृष्णी गर्भा बन के आया, फिर वामन देव के बन के आया, कपिल आप अदिति और कश्यप थे, आज मैं आपके घर में तीसरी बार आया हूँ। तब देवकी ने कहा चार हाथ वाला बेटा देख के लोग हंसी मेरी उड़ाएंगे, आप साधारण बालक बन जाओ, आज भगवान छोटे से बालक बने हैं और बालक बनते ही वसुदेव को प्रेरणा दिए, ततश्च सोरेर प्रचोदयात, मेरे को अब यहाँ से उठा के ले चलो गोकुल में। आज वसुदेव ने श्री कृष्ण को सूत की ग्रह से ऐसे गोद में लिया है, कृष्ण को जैसे ही छाती से लगाया है वसुदेव के हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई हैं, दरवाजा ऐसे खुला है जैसे सूरज निकलने के वक्त अंधेरा भाग जाता है, कोई आवाज नहीं हुआ है। आज माया ने, महामाया ने सारे पहरेदारों और मथुरावासियों को सुला दिया है। बाहर वसुदेव निकलता है, बादल कहते हैं घनश्याम इसका नाम होगा हमारे नाम के ऊपर, अभी तो स्नान भी नहीं कराया है, चलो हम थोड़ा इसका अभिषेक कर ले। ऊपर से बादल से वर्षा होने लगी हल्की हल्की, तब इंद्र ने कहा ये हमारी रक्षा करते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृजंती युगे युगे, हमारी रक्षा करता है, कोई देख न ले, भारी वर्षा करो, इतने हाथी की सूंड जैसा पानी ऊपर से गिरे सामने वाला आदमी न दिखे हो। इतनी जब वर्षा होने लगी तब शेष ने कहा इतना छोटा बालक इंद्र को क्या हो गया ऐसी वर्षा कर रहा है। वसुदेव के पीछे से शेष ने छाता बना दिया, पानी तो बरस रहा है लेकिन कृष्ण और वसुदेव के ऊपर नहीं गिर रहा है। अब वो यमुना के पास पहुंचे हैं, यमुना तो आज समुद्र की तरह बह रही है, बहुत वृण पुल की तरह बह रही है, भयभीत आज वसुदेव नहीं हुए हैं। यमुना को आगे चल के कृष्ण की पटरानी बनना है और इसलिए यमुना अपना हृदय खोल के रास्ता देती है कृष्ण को। आज कृष्ण वहां से बीच से निकले, ऐसे यमुना ने रास्ता दिया जैसे हिंद महासागर ने राम जी को रास्ता दिया था। और जब गोकुल में पहुंचते हैं वहां की कथा आज हम आपको बता नहीं पाए। नंद पांच भाई थे, वसुदेव का पिता और नंद बाबा का पिता ये दोनों भाई हैं। एक की स्त्री वैश थी, उससे नंद, ये पांच भाई हुए, देवमीर के पुत्र पांच हुए, प्रजन्य इसको बेटा प्रजन्य, प्रजन्य के पांच बेटे नंद उपनंद सुनंद आदि, नंद उसमें बीस का बेटा था। दूसरे तरफ जो क्षत्रिय स्त्री थी उसमें से वसुदेव आदि बेटे हुए, तो ये आपस में कजन ब्रादर हैं, एक वैश माता जी से है एक क्षत्रिय से है। तो आज नंद बीच का बेटा है प्रजन्य का, उसको राज तिलक दिया है, उसका विवाह सुमुखा गोप की बेटी यशोदा से हुआ है, जो सबको यश देती है वो यशोदा है, और यशोदा के साथ विवाह हुआ है लेकिन पुत्र संतान नहीं हुआ है, उम्र बड़ी होती जा रही है, सुख सब है पुत्र नहीं है। द्वादशी का व्रत उन्होंने रखा है, योगिनी आई है वहां घर में, योगिनी जब आई है एक उस वक्त ब्राह्मणी लाल कपड़े पहने हुए पूर्णमासी कहता है आपके घर में पुत्र होगा। रात को नंद बाबा ने देखा मेरे हृदय में नीलकंठ नीले रंग का कोई बच्चा प्रवेश किया है, यशोदा उठी का मेरे को भी मेरे हृदय में नीले रंग का बच्चा प्रवेश किया है। आज यशोदा गर्भवती है, आज नंद के घर में भी प्रतीक्षा हो रही है कि नंद के घर में बालक का जन्म होगा। इन पांच भाइयों की एक बहन है, उसको बुलाया गया है कि बहन घर में आएगी, बुआ नहीं आएगी तो घर में बच्चे का कौन सब देखभाल करेगा। बुआ को बुलाया गया है, बुआ घर में आई है, यहाँ भी प्रतीक्षा हो रही है कि किसी वक्त भी यशोदा को बालक होगा। और जो देखने वाली पुराने जमाने में नर्स आती थी जो गांव वाली, उसने यशोदा के उधर को देख के कहा यशोदा तुमने कभी डबल केला खाया है क्या? बोला क्यों बोला दो बच्चे हैं अंदर। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि यशोदा ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन यहाँ महामाया ने नहीं, यहाँ योग माया ने सबको सुला दिया। बाहर चौपाल में सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मध्य रात्रि का समय हो रहा है, वसुदेव जब वहां पहुंचा तो ये सब सोए हुए पाए हैं, अंदर गया है यशोदा के पास, अपना बालक को छोड़ा है, वहां से कन्या को उठाया है, कन्या को लेके जा रहा है, वैसे रास्ता मिला, दरवाजे खुले मिले, अंदर पहुंचते ही हाथों में हथकड़ी हो गई, पांव में बेड़ियां पड़ गई, चौकीदार जाग गए, भागते कंस को बुलाने के गए। 12 बजे भगवान प्रकट हुआ, गोकुल गया, वापस वहां से वसुदेव आया, 3 बजे का टाइम हुआ हो, कंस उस वक्त भी जाग रहा था, उसकी नींद खराब थी, कृष्ण की स्मृति में भागता हुआ उस वक्त आया, बाल बिखरे हुए हैं, पगड़ी भी नहीं बांध के आया है, और देवकी के हाथ से लड़की को छीनने लगा। आज तक देवकी ने कभी नहीं कहा था मेरे बेटे को मार मारो, आज देवकी कहती है ये लड़की है, आज देवकी कहती है इसको मत मारो, ये मेरी आखिरी संतान है, ये मेरा पेट पोंछा हुआ है, इसको मत मारो, और फिर तुम्हारे बेटे को विवाह के दे दूंगी, तुम इसको मत मारो। इसलिए आज ये कह रही है देवकी के लोग ये न कहें कि यशोदा की बेटी थी, इसलिए देवकी के हृदय में कोई प्रेम स्नेह नहीं था उसके लिए, निर्दय थी, लेकिन कंस ने एक भी नहीं देवकी की मानी, छीन के जैसे मारने के लिए पत्थर को मारी, अष्ट भुजाएं धारण करके देवी ऊपर खड़े होकर कहती है मूर्ख कंस तेरे को मारने वाला तो पैदा हो गया है। अब तो कंस ने देवी को देखता भयभीत हो गया, ये असुर देवी के बड़े भक्त होते हैं, उसका मन भी बदल गया। लेकिन साधु के संग से भी असुर का मन थोड़ी देर के लिए बदलता है। देवकी और वसुदेव को प्रार्थना करने लगा, अरे देवताओं ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे थोड़ी मारता, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। वैसे मैं नहीं मारता, कर्म से मारे गए हैं सारे, बस मेरे को आप माफ कर देना, मेरी गलती होगी, आप आजाद हो आज। आज वसुदेव और देवकी को यहाँ से आजाद किया है। कंस थोड़ी देर के लिए तो शांत हो गया, लेकिन घर गया तो चारों मुश्किल आदि सारे बदमाश जब आए, बोला महाराज क्या करेगा ये बच्चा आपका, सारे देवता तो आपसे डरते हैं, हम जितने बच्चे 10 दिन में पैदा हुए सब मार के खत्म कर देंगे, आप चिंता मत करो। अब कंस वापस असुर हो गया। लेकिन उस तरफ वसुदेव बेचारे ने तो मन से गाय का दान कर दिया, लाखों गाय दान कर दी, अब कुछ था तो नहीं जेल में देने के लिए, अपना वचन क्यों तोड़ दिया वसुदेव ने, क्यों नहीं कंस को अपना बच्चा दिया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले तो उसने कहा था कि मैं उसको एक बच्चा दूंगा ही नहीं आपको जिससे आपको भय है, फिर उसने कहा कि भगवान जन्म लेके मैंने देखा है ये कह रहे हैं कि मुझे गोकुल ले जाओ, तो क्या मैं भगवान की बात मानूं या मेरी अपनी बात मानूं, जब भगवान की बात माननी है तो फिर सर्वधर्म परित्याज है, फिर तो सारे संसार के धर्म को परित्याग करना ही पड़ेगा, तो भगवान की आज्ञा पालन करनी है ना, मैं कंस का आज्ञाकारी थोड़ी हूं, भगवान का आज्ञाकारी हूं। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि ये बैंगन बाजार में पड़े हैं बड़े अच्छे हैं, अकबर बोले महाराज बहुत अच्छे हैं, देखो तो सही कितना चमकता है, इसके ऊपर तो मोर मुकुट लगा हुआ है। जैसे घर में लाया बैंगन पकाया, अकबर ने खाया, दूसरे दिन पेट खराब हो गया, बोला बीरबल बैंगन बहुत खराब है, बोला महाराज बाजी होते हैं मत खाओ ये गैस करते हैं आदमी बीमार होता है, अकबर बोले कल बोल रहे थे अच्छा है आज बोल रहे खराब है, बोला महाराज मैं आपका नौकर हूं, बैंगन के बाप का नौकर थोड़ी हूं, जो बैंगन कहेगा वो थोड़ी कहूंगा, जो आप कहोगे वो कहूंगा। तो भगवान का भक्त है वासुदेव, कोई कंस का नौकर थोड़ी है, कंस जैसे कहेगा वैसे करे। और फिर आज वसुदेव ने कहा कि मेरी जो सबसे प्रिय चीज है उसको भगवान के ऊपर निछावर कर देनी चाहिए, घोल के फेंकनी चाहिए, सबसे निजी प्रिय मेरा वचन है ना, आज वचन कृष्ण के ऊपर घोल के फेंक देता हूं, इससे ज्यादा वचन थोड़ी मुझे प्यारा है। आज यहां तो वसुदेव तो बेचारा वापस अपने घर गया, किसी को कुछ कह नहीं पाया, कोई पुत्र भी नहीं है यहां, लेकिन वहां नंद के घर में बालक वो रोया, कन्हैया रोया, यशोदा तो सोई हुई थी पता भी नहीं था, ये जो वसुदेव कृष्ण लाया था वासुदेव, वो नंद नंदन कृष्ण जो था उसके अंदर मिलके एक हो गए दोनों, और एक बालकी का जन्म हुआ था वो लेके गया योग माया वसुदेव। आज तो जो नर्स थी उसने बाहर नंद बाबा को सबको कहा कि ये तो लाला नंद यशोदा के घर में तो बालक का जन्म हो गया, आज तो नंद गांव में उत्सव हो रहा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब बोलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, दादी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद भयो